ये आइडिया बहुत तेज़ी से बिक रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये आइडिया क्यों बिक रहा है, रेडिकलिज्म का, कि ये उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमानों के अंदर जो मुस्लिम ममालिक हैं, ख़ास तौर पे वो ममालिक जिनके पास ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री पावर मौजूद है, सही है, जिनके पास एक मजबूत वॉर मशीनरी मौजूद है, उनमें एक बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, इसके बाद बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वॉर मशीनरी मौजूद है, और दूसरा ईरान है, इसके पास भी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वॉर मशीनरी मौजूद है, उसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान से कम है, लेकिन इतनी कम भी नहीं है, 8 करोड़ है, 80 मिलियन पॉपुलेशन है उसकी, छोटी पॉपुलेशन नहीं है उसकी। दूसरा ये कि तीसरा जो है वो इंडोनेशिया है, इसके पास भी एक और मशीनरी मौजूद है, और इंडोनेशिया में और ईरान में जो कदर मुश्तरक है वो ये है कि ईरान जो है वो कॉलोनाइज हुआ नहीं है उस तरह से जैसे हम ग़ुलाम हुए, लिहाजा उनकी जो ग़ुलामाना सोच नहीं है, यानी कि ईरानियों की सोच साइकी ग़ुलामाना नहीं, क्योंकि वो कभी ग़ुलाम नहीं हुए, इवन ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में भी वो खिलाफत में नहीं आए, वो ऑटोनमस रहे हैं, यानी कि सफ़ावीड्स वगैरह के ज़माने में, तो उनका एक हिस्टोरिकल साइकी है उनकी, कि वो एक सेंस ऑफ प्राइड है कि हमने अपने ऊपर किसी को हुकूमत नहीं करने दी। बहरहाल ये बताते खुद एक प्रॉब्लमेटिक इशू है कि क्या उन्होंने अपने ऊपर किसी को हुकूमत नहीं करने दी, क्यों, क्योंकि जो सफ़ावीड्स थे वो तो ईरानी नहीं थे बुनियादी तौर पर, वो तो आज़रबाईजान से आए थे, तो वो खुद बताते खुद ईरानी नहीं थे, वो तो बाहर से ही आए थे, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी था वो ग़ुलाम नहीं रहे कभी। इंडोनेशिया जो है उसकी जो खसूसियत ये है कि उन्होंने मार कर बाहर निकाला है फ्रेंच को, लड़कर उन्होंने कोई बैलेट के थ्रू आज़ादी नहीं हासिल की, बुलेट के थ्रू आज़ादी हासिल की, इस वजह से उनके उनका जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो डिफरेंट है अदर पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी से, ख़ास तौर पे जैसे पाकिस्तान, हम लोग ने बुलेट के ज़रिए नहीं बल्कि बैलेट के ज़रिए आज़ादी ली है, लेकिन हम तीनों के अंदर मुश्तरक बात यह है कि हम उसके बावजूद, आज़ादी के बावजूद, हाँ, वॉर मशीनरी मौजूद है इन इन ममालिक के पास, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वॉर मशीनरी है और ये लड़ सकते हैं, पॉपुलेशन भी बड़ी है। दूसरी जो कॉमनैलिटी है वो ये कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन यंग है, जवान लोग हैं, यानी कि पाकिस्तान में 2025 तक या 2035 तक पाकिस्तान की ओवरऑल पॉपुलेशन का 67% जो होगा वो जवान लोगों के ऊपर वो होगा, यानी कि जो मेजर जो लोग पॉपुलेशन होगी वो जवान लोगों की होगी पाकिस्तान में। ईरान में भी ऐसा ही है, इंडोनेशिया में भी ऐसा ही है, यानी कि जो इंटरेस्टिंग, अच्छा, इन तीनों ममालिक के अंदर फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस भी बहुत ताकतवर हैं, जो तीसरी कॉमनैलिटी है वो ये है। ईरान के अंदर तो उलमा ही हुकूमत कर रहे हैं अभी तक, और इंशाल्लाह करेंगे मुस्तकबिल में भी, लेकिन इंडोनेशिया में भी मजहबी जो रुझानात रखने वाले लोगों उनकी तादाद बढ़ रही है, यानी कि एग्रेसिव हैं वो और उनमें तादाद बढ़ रही है। ये और बात है कि बहुत ज़्यादा लिबरल माशरा है ईरान और पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन वहाँ पर भी एक ख़ास किस्म की यूँ समझ लें कि रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस, जैसे इवन ये कहती है कि ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा, हालांकि उनकी ये तारीख नहीं रही, उनकी हिस्ट्री ये नहीं रही कि वो इस किस्म के रहे हों, लेकिन इंडोनेशिया के अंदर भी एक ख़ास किस्म का रिएक्शन है अगेंस्ट वेस्टर्नाइजेशन। लेकिन हमारे लिए ये फैक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिस चीज़ को हम फोकस करना चाह रहे हैं वो ये कि जो प्लेजर और सेटिस्फैक्शन का जो मामला होता है उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो होती है वो जवान लोगों के लिए होती है। जो माशरत है, जो कि लिबरल माशरत है, लिबरलिज्म जो माशरा पैदा करता है, वो माशरा बुनियादी तौर पर मुतकाजी होता है एक ऐसी ज़िंदगी के जिसमें इंसान जवानों की तरह ज़िंदगी गुजारे, ठीक है, और जवान आदमी की जो ज़िंदगी होती है उसमें लज्जत होती है, और इजहार के नित नए तरीक़े हो गए, ठीक है। अच्छा, तो बुनियादी तौर पर जो लिबरलिज्म ने जो माशरा पैदा किया मग़रिब के अंदर, ज़ाहिर है कि वो भी इसी नौयत का होगा कि जवान आदमियों के लिए ही वो माशरा है। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन, जो हिस्टोरिकल कॉन्ट्रडिक्शन है, जो रिमार्कबल कॉन्ट्रडिक्शन है, जिसको सिर्फ तारीख़ी अमल के ज़रिए ही पहचाना जा सकता है, उसको आप नज़रियात और ख़यालात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि तारीख़, यानी कि जिस तरह कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों की हकीकत को जानने के लिए अंजाम का इंतज़ार करना पड़ता है, फिर वो अंजाम पर पता चलता है कि क्या इसकी हकीकत क्या है। तो लिबरल जिस किस्म की दावत देता है, वो दावत तो है जवान आदमी के लिए, लेकिन जब उस माशरत का इंसान शिकार होता है तो माशरे में जवान लोग ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ बूढ़े रह जाते हैं, ठीक है। यानी कि यूरोप, यानी कि अमेरिका की लिबरलिज्म की जो तारीख़ है वो 300 साल की है, जो यूरोप की लिबरलिज्म की तारीख़ है वो 700 साल की है। तो ज़ाहिर है कि अगर हम देखेंगे कि आइडियल लिबरल माशरत जो है वो पैदा हो रही है जिस तारीख़ी अमल के नतीजे में, बुनियादी तौर पर वो यूरोपियन है, यानी कि फ्रेंच और ब्रिटिश है, ये हैं असल में। यानी कि अगर आप देखें कि वो, अभी मैं यानी कि विलियम पेन ही की एग्जांपल से शुरू करूँगा, कि जो चीज़ मैं पढ़ कर आया हूँ वो मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि विलियम पेन को हमने कभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब कुछ ऐसे लोग भी हमारे रेफरेंसेस में आ जाएं जिनको हम आमतौर पे डिस्कस नहीं करते। तो इंशाल्लाह इसमें हम कोशिश यही करेंगे कि उन लोगों को डिस्कस करें जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो भी लिबरल फिक्र की नशोनुमा में। तो ब्रिटिशर और फ्रेंच जो थिंकर्स हैं, वो जो है 16 सेंचुरी ऑनवर्ड उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। ज़ाहिर है कि अमेरिका तो आप 1776 यानी कि 18वीं सदी का एक्सपीरियंस है, तो ज़ाहिर है कि वो तो 16 सेंचुरी से वहाँ पर उन्होंने लिबरल थॉट पे काम करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने जिस किस्म की माशरत का तकाजा किया था, उस माशरत के नतीजे में अगर जवान लोगों के लिए ही वो तर्ज ज़िंदगी मुतासर कुन था या अट्रैक्टिव था, तो फिर उस माशरे के अंदर मेजॉरिटी जो होनी चाहिए थी वो जवान लोगों की होनी चाहिए थी। लेकिन डेमोग्राफिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि जो लिबरल तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करते हैं, उसके नतीजे में जवान लोग ख़त्म हो जाते हैं और बूढ़े लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप मुस्लिम माशरों को देखें रेडिकली, तो मुस्लिम माशरों के अंदर जो एतराज़ किया जाता है वो ये कि मुस्लिम माशरों का तकाजा ये है कि 20 साल का आदमी 60 साल के बुढ़े की तरह बिहेव करे। 60 साल के बुढ़े की तरह बिहेव करने से क्या मुराद है? वो बहुत ज़्यादा अय्याशी ना करे, बहुत ज़्यादा अपने इजहार को कंट्रोल करे, अपने नफ्स से को काबू में रखे, वगैरह 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 वगैरह। तो अगर वो इस तरह का होगा, अपने नफ्स को काबू में रखने वाला होगा, तो इसका मतलब है 20 साल की उम्र में ही वो बूढ़ा हो जाएगा, 20 साल की उम्र में ही वो बूढ़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो माशरती ज़िंदगी होगी वो बूढ़ों की ज़िंदगी होगी। लेकिन डेमोग्राफी ये बताती है कि ऐसे माशरों के अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जवान होती है, जो जवानों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं उनमें बूढ़े बढ़ जाते हैं, और जो बूढ़ों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं वहाँ जवान बढ़ जाते हैं। ये एक हिस्टोरिकल डेमोग्राफिक कॉन्ट्रडिक्शन है जो कि लिबरल ऑर्डर पैदा करता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आप जवानों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं तो आप जवान लोग पैदा नहीं कर सकते, और जब आप बूढ़ों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं तो आप जवान लोग पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये 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 एक इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, यानी कि अल्लाह की तरफ से जो है मुसलमानों को कम से कम इन तीन रियासत, एक और को वो मेंशन करती है सैलरी इथोपिया को, यानी कि ईरान, इथोपिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। वो कहती है चार मुल्क हैं जो ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मुसलमान है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जवान है, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन के अंदर फंडामेंटलिस्ट आइडियाज़ जो हैं वो गहरे हैं। अब हो सकता है कि ये उनका, उनकी खाम ख्याली हो या उनका खौफ हो, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी माशरे में देखें तो उनका जो इस्लाम की तरफ रुझान है जवान लोगों का, वो कम हुआ है ओवर द ईयर्स। हमें इस फैक्ट को मानना चाहिए, हमें इस फैक्ट को मानना चाहिए कि ईरान के अंदर जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं और जिनका इंटरेक्शन है, कम से कम ईरान के शहरों के अंदर जो इस्लामी असबियत है मुस्लिम नौजवानों के अंदर, वो कम हुई है। हालांकि उलमा वहाँ पे मौजूद हैं, वो करप्ट नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ तो लोग ये कहते हैं कि जवान लोग इसलिए मुतनफ़िर हो जाते हैं कि वो लोग करप्ट हैं, पैसे बनाते हैं और ये करते हैं और अय्याशियाँ करते हैं। ईरान के अंदर तो ऐसा नहीं है कि वो अय्याशियाँ कर रहे हों या पैसे बना रहे हों या हरामखोरी कर रहे हों, उसके बावजूद वो उलमा से मुतनफ़िर हो रहे हैं। तेहरान वगैरह के अंदर जो है बड़ी ख़तरनाक किस्म की रिएक्शन है अगेंस्ट रिलीजियस पीपल, और ख़वातीन में ज़्यादा है, मर्दों में कम है। इसी तरीके से इंडोनेशिया में भी रिएक्शन है अगेंस्ट, और इंडोनेशिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा यानी कि ये फ्रीडम और ये वो।
अच्छा, ये जो मतलब ये जो आपने जवानों और बूढ़ों के हवाले से जो तजिया किया है, मतलब इसी को अगर हम इतलाह करें मतलब ईरान के ऊपर, तो ईरान में भी इसी यानी इसी उसूल के तहत जब हम जवान रहना चाहते हैं तो बूढ़ी आबादी पैदा होती है, बूढ़े रहना चाहते हैं तो जवान आबादी। अगर इसको हम ईरान पर जो है मुंतबक करें तो आलम इस्लाम में सबसे ज़्यादा औरतों को आज़ादी ईरान में हासिल है। जितनी ईरानी औरतें आज़ाद हैं, फौज में 3 लाख औरतें, मीडिया में भरी हुई हैं, फोटोग्राफर रिपोर्टर ये वो, इतनी पूरे आलम इस्लाम में कहीं हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मतलब औरतों के अंदर जो है मतलब जो है यानी फेमिनिज्म जो है वो ईरान के अंदर।
जी बिल्कुल,
ये क्या फिनोमेनन है, ये भी यही है,
ये भी यही है। मसला क्या होता है, मसला ये होता है, हम अभी तो हमने जो पॉजिटिव यानी कि दुश्मन हमें कैसे देखता है ये देखने की जरूरत है। इससे तीन बातें पता चलती हैं। एक तो ये पता चलती है कि दुश्मन हमें इस तरह देखता है कि वो ये नहीं देखता कि शिया है या सुन्नी है या सेंट्रल एशियन है या फार ईस्ट के हैं। यानी कि आप देखें तीनों अलग अलग नस्लें हैं, तीनों के यानी कि इंडोनेशिया में हम्बली सबसे ज़्यादा होते हैं, है ना खालिद भाई?
शाफाई
बहरहाल हनाफाइड नहीं है। अच्छा, दूसरा जो है सुन्नी ज़्यादा है वहाँ पर, यहाँ पर भी सुन्नी ज़्यादा है, ईरान के अंदर शिया ज़्यादा है। लेकिन जो उनका थ्रेट है, जो मगरिब आपसे थ्रेट फील करता है, वो इक्वल है अक्रॉस द बोर्ड। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इमाम हनीफा को फॉलो करते हैं या इमाम शाफई को फॉलो करते हैं, इमाम हम्बल को फॉलो करते हैं या इमाम जाफर सादिक को फॉलो करते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि जो माशरत निकल के आएगी ना, वो एंटी लिबरल होगी। यानी कि एंटी लिबरलिज्म यानी कि शियत भी एंटी लिबरल है, हम्बलियत भी एंटी लिबरल है, शाफईयत भी एंटी लिबरल है और हनाफाइट्स भी एंटी लिबरल है। तो जो अगर फ़र्ज़ किया कि आप ये समझते हैं, यानी कि ये कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं है, अगर फ़र्ज़ किया कि एक लिबरल आदमी ये समझता है कि इंसानियत की बेहतरी और फलाह और अमन और आलमी अमन और आलमी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि माशरे और रियासतें लिबरलाइज हो जाएं, तो वो ये देखेगा कि ये नहीं कि वो कोई साजिश कर रहा है ये कि कोई हम इनको लूट लें और इनको बर्बाद करते हैं, ऐसा नहीं। पॉलिटिकल थियरी के पर्सपेक्टिव में देखें कि वो ये चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि इन माशरों के अंदर कुछ ऐसी ideological, theoretical और historical बुनियादें मौजूद हैं जो उन्हें लिबरल बनने से रोक सकती हैं, जो उनको लिबरल बनने से रोकती हैं। तो वो लिबरल बनने से जो जो चीज़ें रोकती हैं वो उसमें वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि कौन सी नहीं रोकती, सब रोकती हैं, किसी में ज़्यादा पोटेंशियल है, किसी में कम पोटेंशियल है। तो आप जब हमें मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि भाई हमारा मुकाबला अगर लिबरलिज्म से है तो लिबरलिज्म को लिए कौन कौन सी चीज़ें रास्ता रोकती हैं, तो इसका मतलब वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती हैं, आपकी कुव्वतें हैं। और दूसरी बात ये कि आपके अंदर मुश्तरका मफाद के हुसूल की ख्वाहिश जो जन्म ले सकती है वो उन्हीं कुव्वतों की बुनियाद पर हो सकती है जो लिबरलिज्म जिसे अपने लिए ख़तरा समझता है। तो ये याद रखें कि जिसे दुश्मन अपना लिए ख़तरा समझता हो उसी को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। जंगों के अंदर यही बुनियादी उसूल है कि अगर आप वॉर ऑफ नैरेटिव्स में हैं तो आप ये देखेंगे कि कौन से नैरेटिव एंटी लिबरल नैरेटिव मौजूद हैं आपके पास जिससे वो डरता है, तो उन नैरेटिव्स को जो कि पहले से नेचुरली आपके पास मौजूद हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये तो मैंने अभी आपको बताया, ये बैकग्राउंड है, लेकिन अब जो कन्फॉर्मिस्ट रेडिकलिज्म क्या है, कन्फॉर्मिस्ट रेडिकलिज्म जो है वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है रेडिकलाइजेशन का, लेकिन साथ में वो एक ज़बरदस्त कदम की कन्फॉर्मिटी भी आपको देता है, यानी कि आपको रेडिकलाइज करता है ये कहकर कि देखो मैं एक जवान आदमी हूँ। जवान आदमी रेडिकल होता है और सबको ये बताया गया है, गला सड़ा बोसीदा निज़ाम। लेकिन ये जो गले सड़े बोसीदा निज़ाम का जो सारा का सारा मलबा है वो रेडिकलिज्म के नाम पर जिस पे गिरा रहा है वो नैरेटिव्स हैं जो आपकी कुव्वत है, ठीक है। यानी कि ये बात ठीक है कि दुनिया में एक माशरती अमल के नतीजे में आपके जो हिस्टोरिकल कल्चरल थियोरेटिकल पर्टिकुलैरिटीज़ हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें टूट फूट होती है और ख़राबियाँ पैदा होती हैं, ठीक है। लिहाजा दुनिया में आप कभी भी कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि जिस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में हम आज मौजूद हैं वो परफेक्ट है। अमेरिका में भी कोई नहीं कहता, यूरोप में भी कोई नहीं कहता, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस गले सड़े निज़ाम के बारे में लोगों को तश्वीश है वो निज़ाम हाय ज़िंदगी हैं जो कि रिवायती हैं, जो कि मज़हबी हैं और जो कि तमद्दुन के की जिन बुनियादों के ऊपर खड़े हुए हैं वो प्री मॉडर्न तमद्दुन की बुनियादें हैं, प्री मॉडर्न कल्चरल फाउंडेशंस हैं, उनको आप गला सड़ा निज़ाम कहते हैं। अच्छा ठीक है, वो गले सड़े होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, होंगे वो गले सड़े नहीं, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल जो निज़ाम तुम पेश करते हो वो तुम पेश करते हो इन एक नएपन की बुनियाद पे, नया निज़ाम, नया पाकिस्तान, नया जैसे ईरान के अंदर भी अब आप लोगों को पता होगा कि नई मूवमेंट खड़ी हो गई, न्यू ईरानीज कहते हैं अपने आप को, जिस तरह यंग टर्क्स मूवमेंट थी ना जो कि नेशनलिस्ट सेक्युलर मूवमेंट थी, इसी तरह न्यू ईरान की जो टर्म है वो अब इस्तेमाल करने लगे। बुनियादी तौर पर जाहिर है कि ये अमेरिकन ही इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तो, लेकिन डेफिनेटली ये नैरेटिव बोरो करेंगे। आप देखिएगा कि इंडिजीनियस डिस्कोर्स के अंदर ईरान के उलमा के खिलाफ डिस्कोर्स को पैदा करने के लिए, तो जो नएपन के नाम पर आप पेश करते हैं वो तो 17th सेंचुरी का के तस्वुरात हैं, 17वीं सदी के इदारे हैं, 17वीं सदी का स्टेट स्ट्रक्चर है। नहीं तो सवाल ये पैदा हो, ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि भाई इसमें नयापन क्या है, नई बात क्या है इसमें। इसमें नई बात ये है कि वो 17वीं सदी के जो तसव्वुरात में इंसानों से जो वादे किए गए थे वो वादे पूरी दुनिया में पूरे हो गए, अलावा इन रियासतों, इन माशरत होंगे, पूरी दुनिया में लोग आज़ादी से मुतमत्ते हो रहे हैं और मुस्तफीद हो रहे हैं और अमन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और लज्जतों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इन माशरों के अंदर कहीं पर रियासत में जैसे ईरान के अंदर उलमा के हाथ में कुव्वत तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, और पाकिस्तान में और अपना इंडोनेशिया में और इथोपिया में और क्या कहते हैं नाइजेरिया के अंदर और सोमालिया के अंदर ये पावर में तो नहीं है मजहबी लोग, लेकिन ये उस सड़े गले निज़ाम की तरफ को मुसल्लत कर देना चाहते हैं। अच्छा तो भाई आप कौन सा तरोताज़ा निज़ाम लेकर आ गए, आप भी तो बता दें अपना तरोताज़ा निज़ाम। तो यानी कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि भाई दोनों ही पुराने हो गए ना, एक 300 साल पुराना है, एक 1400 साल पुराना है। और अगर आप सब कॉन्टिनेंट के और तनाजुर में देखें
یعنی کہ پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو وہ جو ہے 300 سال بھی پرانا نہیں ہے. وہ تو پرانا ہے یوں سمجھ لیں کہ اٹھارہ سو ستاون 150 سال پرانا.
اچھا اس میں جو آپ نے مطلب اسلامی ملکوں کا ذکر کیا, اس میں آپ نے ترکی اور مصر کو چھوڑ دیا, اس کی کوئی خاص وجہ؟
سر ابھی دراصل میں ان میں وہ ملک نہیں لے رہا جن کے اندر جو لبرلائزیشن کا پروسیس ہے اس پہ ویسٹ متفق ہو گیا, جیسے ایران ترکی میں متفق ہو گیا, مجھے خطرہ یہی ہے کہ متفق ہو گئے ہیں, اور ایجپٹ کے اندر بھی عرب اسٹریمس کو بھی ہم, یا عرب جو موومنٹ ہے اس کو بھی ہم اسی ریڈیکل کنفارمزم کے کانٹیکسٹ میں ہم ایکسپلین کریں گے, اس لیے اس کو ایکسپلین کر لیا. یعنی کہ ریڈیکلائزیشن کے نام پر آپ نے جو کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو نظام آپ مسلط کر رہے ہیں وہ تو پرانا ہے, 300 سال پرانا, اس میں کوئی نیا پن نہیں ہے, بلکہ وہ تو بالکل اسی طریقے سے کنفارمسٹ ہے, بلکہ اس سے زیادہ کنفارمسٹ ہے. مثلاً ریاست کے 3 ہی پلر ہوں گے, ریاست ڈی سینٹرلائزڈ ہوگی, ریاست کے اندر چیک اینڈ بیلنس کمپیٹیٹیو ریلیشنس کی بنیاد پہ ہوگا, ریاست کے اندر مانیٹری نظام انٹرنیشنل گلوبل کیپٹل کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرے گا, ریاست جو ہوگی اس کی جو ملٹری اسٹرکچر ہوگا وہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ نیشن اسٹیٹس کا رہتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو مطلب یہ کہ بے انتہا, یعنی کہ حد تو یہ کہ ریاست کا جو بیوروکریٹک اسٹرکچر ہوگا وہ بھی تقریباً ایک جیسا ہوگا, ریپلیکیٹ کرتا ہوگا ایک دوسرے سے, اور دوسری ریاستوں کے ساتھ مل کے آپ مشترکہ جو ہے بیوروکریٹک انسٹیٹیوشنس ایڈاپٹ کریں گے, پورے بیوروکریٹک انسٹیٹیوشن ریپلیکیٹ کریں گے آپ, اٹھا اٹھا کر امپوز کریں گے, اور اس کی بنیاد پہ آپ یہ کہیں گے یہ نیا ہے. ظاہر نیا تو نہیں ہے بھائی, یہ تو پرانا ہے. تو ویبر نے بتا دیا تھا تقریباً 19ویں صدی کے شروع میں کہ بیوروکریٹک نظام کیسا چلتا ہے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کم از کم اتنی یعنی کہ آنیسٹی تھی ویبر کے اندر کہ ویبر نے کہا کہ بھائی جب ہم آزادی کی, ہم تو یہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں کہ جو سڑا گلا نظام ہے اس پہ بنیادی اعتراض یہ ہے کہ وہ آزادی نہیں دیتا, اور جو نیا نظام آئے گا جیسا ان لوگوں کے خیال ہے وہ آزادی دے گا, یہی ہے نا, اسی وجہ سے وہ لبرل ہے, اور جب آزادی ملے گی تو انسان جو ہے وہ فری بھی ہو جائے گا, اور اس کے نتیجے میں لذت بھی اس کو ملے گی, اور جو ہے امن بھی مل جائے گا, آزادی بھی مل جائے گی, لذت بھی مل جائے گی, اور پروگریس بھی مل جائے گی, ترقی, امن, آزادی اور لذت, چاروں چیزیں ساتھ مل جائیں گی جیسا کہ ساتھ مل گئی ہیں یورپ میں. ٹھیک ہے, تو ویبر کہتا ہے کہ بھائی جو بیوروکریٹک فریم ورک ہوتا ہے وہ بیوروکریٹک فریم ورک انسانوں کو ڈسپلن کرتا ہے, اور اس ڈسپلن کے اندر کوئی امکان نہیں رہتا آزادی کا. یہ ویبر کے الفاظ ہیں, اور میں نے ابھی جو آرٹیکل لکھا اس کے اندر پورا ایکسپلیسٹلی ریفرنس کے ساتھ موجود ہے. وہ کہتا ہے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ جس نظام زندگی میں زندہ ہو وہ سرمایہ دارانہ ہے یا اشتراکی ہے, کیونکہ بنیادی طور پر تو وہ بیوروکریٹک ہے, تو بیوروکریٹک اگر ہوگا تو آزادی کا کیا سوال ہے, تو کوئی آزادی نہیں ہوتی, چاہے آپ اشتراکیت کی بیوروکریسی اسٹیبلش کرو یا سرمایہ کی بیوروکریسی اسٹیبلش کرو, بیوروکریسی تو آپ کو آزادی نہیں دیتی, کوئی آزادی نہیں ہوتی. یہ ویبر نے 19th century میں بتا دیا تھا, late 19th century اور 20th century کے اندر, اور اس کے جتنے جانشی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ خیال فزل آؤٹ ہو گیا. اگر آپ فالو کریں یعنی کہ ویبر کے بعد بیرنگٹن مور کو, اور بیرنگٹن مور کے بعد تھیڈا اسکاش پال کو, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس تصور سے کہ بیوروکریسی آپ کو آزاد نہیں رہنے دیتی, اور یہ جو ڈھکوسلا ہے آزادی کا یہ محض ایک آئیڈیل کے طور پر تو رہتا ہے لیکن حقیقتاً سبسٹینشیٹ نہیں ہوتا, یہ جو ہے بذات خود ایک اکنالجڈ ڈسکورس ہے کم از کم पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का या सोशियोलॉजी प्योर सोशियोलॉजी का।
रेडिकल माशरे हैं या ट्रेडिशनल सोच वाले माशरे हैं, वो अपनी फिक्स्ड और आइडेंटिफाइबल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि विलायत फकीर कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर एक ओलिगार्की एक तरह की बन गई, रिलीजियस ओलिगार्की बन गई, या हमारे मुल्क में मदरसों की एक जो निज़ाम है उसकी एक अपना डिसिप्लिन है, ब्यूरोक्रेसी है, वो उनके लिए पाकिस्तान के माशरे में वो ईजिली आइडेंटिफाइबल है कि ये एक सर्टन तबका है, जब उसका लबादा पहन के मैं आ जाऊंगा तो मुझे फौरन एसोसिएट कर दिया जाएगा उस चीज़ के अंदर, और उसकी बुनियाद पे मेरी हर बात को रिजेक्ट भी किया जाएगा कि ये तो अब उसी ब्यूरोक्रेसी का है और इसके अंदर तो बिल्कुल भी आज़ादी मेरी पॉसिबल नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ अबूदियत में फंस जाऊँगा। इसके बनस्पत ये आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है कि वो भी एक फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, उसकी अपनी ब्यूरोक्रेसी है, उसके अपनी इंस्टीट्यूशन हैं हमारे ममालिक के अंदर जो बैठ के इसके प्रचार करते हैं। ये जो बढ़ापे वाली बात है, एज अ टेक्नोलॉजी पर्सन हमें जो चार सबसे ग्लोबल ट्रेंड्स बताए हैं उसमें नंबर वन ग्लोबल ट्रेंड, पहला ग्लोबल ट्रेंड इसमें सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रुझान होगा और मरकज होगा और उसी में सारा पैसा है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट। हर बंदे की आइडेंटिटी मैनेज करो, क्यों मैनेज करो, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन, सोशल वेलफेयर के लोगों तक उनके चेक्स पहुँचाना, उनकी सहूलियात, उनकी मेडिकल केयर, उनकी सारी लिटिगेशन केसेस मैनेजमेंट के लिए असल जो काम सॉफ्टवेयर का होना है वो आइडेंटिटी मैनेजमेंट होता है। तो हर डेवलपिंग कंट्री में पहला काम क्या करते हैं कि नाजा जैसे सिस्टम्स लगाते हैं, पाइसिस लगाते हैं, कस्टम्स के सिस्टम बनाते हैं, टैक्सेशन के सिस्टम बनाते हैं कि डेटा को मुनज़्ज़म कर लो, पहले बंदे को आइडेंटिफाई कर लो,
सही है,
फिर वो ब्यूरोक्रेसी इफेक्टिवली कंट्रोल करेगी।
बिल्कुल, हाँ ज़ुल्फ़िकार, मैं आऊँगा 1 बजे तक, 1 बजे। अच्छा कौन सा, अच्छा अच्छा नहीं हमारे पास से कौन है, अच्छा ठीक ओके।
ये आईटी का लीडिंग ग्लोबल ट्रेंड है,
सही है,
बट सवाल ये है कि इसके नतीजे में जो ब्यूरोक्रेसीज आपको शायद आइडेंटिफाइबल है, ये आम बंदा क्यों आइडेंटिफाई कर रहा है, ये भी तो एक पुरानी ब्यूरोक्रेसी एस्टैब्लिश कर रहा है, यही है उसी चीज की
उसकी बुनियादी है कि ब्यूरोक्रेसी फॉर व्हाट, ये इम्पॉर्टेंट चीज़। देखें ये तो ठीक बात नहीं है कि मुसलमानों के अंदर ब्यूरोक्रेसी डेवलप होती है, मुसलमानों के की जो स्ट्रेंथ रही है कि उनके पास रिलीजियस ब्यूरोक्रेसी नहीं रही कभी भी, यही वजह है कि मुसलमानों में किसी एक बड़े आदमी के गिरने से इस्लाम नहीं गिरता, सही है, यानी कि मुसलमानों के अंदर इस्लाम का कोई अल्टीमेट वो नहीं है, जनरल रिप्रेजेंटेटिव है, पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता इस्लाम का, उम्मत होती है उसके अंदर, अगर उम्मत के अंदर से कोई आदमी निकलता है और सही पोजीशन लेता है उम्मत उसके पीछे खड़ी हो जाती है, अगर वो गिर जाए या शहीद हो जाए या धोखा दे दे वगैरह तो उससे इस्लाम नहीं गिरता है, क्योंकि वो इस्लाम को रिड्यूस नहीं करते उसके अंदर, ट्रेडिशनली मुसलमानों के अंदर यही रहा, एक आदमी गिरने दूसरा खड़ा हो जाता है, इधर से खड़ा उधर से खड़ा हो जाता है, यू नो। ब्यूरोक्रेसी का तजर्बा क्रिश्चियन ब्यूरोक्रेसी है, जो कि एक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया, पोप गिरा तो सब गिर गया, पोप के गिरना सबको गिरा दिया, तो पोप के गिरने के नतीजे में बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जब पोप की ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई तो उसके नतीजे में दो ब्यूरोक्रेसीज के लड़ाई हुई यूरोप के अंदर, अगर हम लियोन की किताब देखें ना इस्लाम इन द आइज ऑफ द वेस्ट, उसके अंदर उसने एक्सप्लिसिटली बताया है कि सेक्युलर नाइट्स के बीच में और पावरफुल क्लैरिक्स के बीच में इंटरेस्ट का क्लैश था, और दो ब्यूरोक्रेसीज थी, एक तो स्टेट ब्यूरोक्रेसी थी जो कि किंग की ब्यूरोक्रेसी थी, यानी कि मोनार्क की ब्यूरोक्रेसी थी, और एक ब्यूरोक्रेसी जो थी वो चर्च की ब्यूरोक्रेसी थी, तो दोनों ब्यूरोक्रेसीज के बीच में ये था कि लैंड जो होती थी पूरी क्रिश्चियन लैंड जो होती थी वो ओन्ड बाय द चर्च, क्योंकि वो ज़मीन किसकी है, अल्लाह की है ज़मीन, अल्लाह की ज़मीन है तो उस पर कौन हुकूमत है, उसके अल्लाह के मानने वाले, तो लैंड जो होती थी बुनियादी तौर पर रोम से जो क्लैरिक्स आते थे उनकी होती थी लैंड, और वो सिर्फ क्लैरिक्स नहीं होते थे, वो बहुत ही पावरफुल लैंड लॉर्ड्स होते थे, और किंग जो होता था उसके भी लॉर्ड्स होते थे, तो लेकिन ये कि जो मेजर जो पॉपुलेशन थी वो ये कहती थी कि भाई बादशाह फिर किस काम का है, जो ज़मीन तो उसके पास उसके काबू में ही नहीं है। तो वो कहते थे कि भाई आप नेगोशिएट करो। तो लैंड लॉर्ड जो होता था, जो लॉर्ड होता था या काउंट होता था या ड्यूक होता था, उसके लिए ये ज़रूरी होता था कि वो उनकी कंसल्टेशन के अंदर काम करे। लॉर्ड में और क्लैरिक के बीच में जो बुनियादी फ़र्क होता था वो ये फ़र्क होता था कि लॉर्ड के बाद मरने के बाद ज़मीन उसके बेटे को मिल जाती थी, इनहेरिटेंस में चलती थी, जबकि जो क्लैरिक्स होते थे उसके मरने के बाद ज़मीन जो थी उसको दूसरा क्लैरिक आके हैंडल कर लेता था। क्यों? क्योंकि कैथोलिसिज्म के अंदर प्रीस्ट शादी नहीं करता तो उसकी तो कोई औलाद होती नहीं थी, तो बुनियादी तौर पर वो इनहेरिटेंस में नहीं जाती थी। तो उससे फ़ायदा क्या होता था? उससे फ़ायदा ये होता था यंग ब्लड आता रहता था बार बार, ये मर गया क्लैरिक उसके बाद रोम से एक दूसरा क्लैरिक आ जाता था, वो एक नए वलवले के साथ करता था। तो उसके नतीजे में उन्होंने तकरीबन 1600 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, 1600 ईयर्स तक यूरोप में किसी को पर मारने की नहीं थी। और ये जो पहला जो ये जो पूरी क्रूसेड हुई है उसके बारे में बुनियादी तौर पर लियोन का ये ख्याल है कि बुनियादी तौर पर 9वीं सेंचुरी के अंदर जो मोनार्क्स थे उन्होंने रिजिस्ट करना शुरू कर दिया था अगेंस्ट क्लैरिकल ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने कहा ये हर जगह ये क्यों आगे बैठ जाते हैं। तो वो क्लैरिक जो होता था उसके पास कुव्वत नाफिजा कोई नहीं होती थी, उसकी कुव्वत नाफिजा जो होती थी वो लॉर्ड्स के पास होती थी, फौज जो होती थी वो लॉर्ड के कंट्रोल में होती थी, और क्लैरिक्स के पास मॉरल अथॉरिटी होती थी लेकिन लैंड को वो ओन करता था। तो क्लैरिक जो था ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ 9वीं सेंचुरी के अंदर कि क्लैरिक्स तो आ जाता था ज़मीन तो वो काबू करता था लेकिन लॉर्ड उसकी बात नहीं सुनता था। क्यों? क्योंकि डंडा तो उसके पास है ना, क्लैरिक के पास सिवाय अपनी शराफत और नेकनामी, लेकिन वो सेंटर से बहुत दूर है ना। तो जो पोप ग्रेगरी था उसने कहा कि भाई ये तो बड़ा मसला है, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनेगा। तो उसने कहा कि भाई पहला काम ये करो कि पेपल आर्मी बनाओ, पोप की आर्मी, पेपल आर्मी। अब पेपल आर्मी अगर आप बनाएंगे तो बादशाह जितने भी थे वो जाग जाएंगे कि ये फौज किसके खिलाफ बनाई जा रही है, जब हम डिफेंड कर रहे हैं तो फौज रियासत के अंदर, रियासत जैसे हम कहते ना रियासत स्टेट विद इन स्टेट। तो उन्होंने कहा भाई ये स्टेट जब के पास जब फौज है और डिफेंडर ऑफ द चर्च मौजूद है यानी कि लॉर्ड, तो ये आर्मी क्यों बना रही है, पेपल आर्मी। तो लियोन कहता है कि उसके लिए पोप ग्रेगरी ने कहा कि देयर इज एन एनिमी, शैतान आ गया है यूरोप के अंदर और वो मुसलमान है। 7वीं सेंचुरी में मुसलमानों ने फतह किया है स्पेन को, तो और वो फ्रेंच आइलैंड्स तक पहुंच गए। तो पोप ग्रेगरी के बारे में लियोन कहता है कि बहुत अच्छी तरह पोप ग्रेगरी को पता था कि मुसलमान हज़रत ईसा से मोहब्बत करते हैं, हज़रत मरियम से मोहब्बत करते हैं, वो एक खुदा को मानते हैं, वो पेगन्स नहीं है, पेगन्स नहीं है, बल्कि वो ओन करते हैं बाइबल को भी और तौरात को भी और उनके पास किताब भी है। लेकिन उसने अपने पूरे लोगों को जो ख़त लिखे उसके अंदर बताया कि एथीस्ट पेगन्स जो हैं वो आ गए। तो वो जो उलमा थे, जो क्रिश्चियन उलमा थे, उन्होंने लियोन कहता है मिसगाइड किया अपने बादशाहों को और उन्होंने मिस्टिफाई किया मुसलमानों की तेज़ी से उठने वाली मूवमेंट को। और उन्होंने कहा कि ये तेज़ी से जो उठ रहे हैं यानी कि वबा, उसको वबा के तौर पे पेश किया, यानी कि यूरोप के अंदर जो सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ थी वो थे वबाई अमराज 9वीं सेंचुरी के अंदर, जिनसे उनकी रूह फना हो जाती थी। वो थे दो, एक था प्लेग और एक थी लेप्रसी। प्लेग और लेप्रसी से रूह फना हो जाती। तो उन्हें यही पता था कि प्लेग और लेप्रेसी जो है वो फैलती है, तो जहाँ पर भी वो जाएगी फैल जाएगी। तो उन्होंने मुसलमानों को पेश किया प्लेग और लेप्रेसी के तौर पर। और उन्होंने कहा कि ये इतनी पावरफुल रियासतों को कैसे शिकस्त पे शिकस्त दे रहे हैं। रोमन्स को भी इन्होंने मार के निकाल दिया, पर्शियंस को इन्होंने लिटा दिया, पर्शियंस को तो फतह नहीं कर सके रोमन्स, रोमन उनकी हार्ट लैंड के अंदर कभी नहीं घुसे, नेवर इन देयर हिस्ट्री। ये अलेक्जेंडर से भी जो लड़ाई हुई है बाहर हुई है, मैदान से बाहर आ गए, यानी कि मेसोपोटामिया में हुई है असल में लड़ाई, इराक की जमीन पर हुई है, ईरान के अंदर वो नहीं घुस सके। मुसलमान ईरान को पूरे रौंद डाला और पूरे ईरान को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो उसने पोप्स ने ये फैसला बताया कि मुसलमान असल में शैतान है, शैतान से तुम लड़ ही नहीं सकते जब तक कि तुम्हारे साथ गुडनेस ना हो, बाइबल की ताकत ना, और बाइबल की ताकत के लिए तुम्हें सेक्युलर किंग्स की जरूरत नहीं बल्कि पेपल आर्मी की जरूरत है। तो जो पेपल आर्मी में भर्ती होगा उसको दो चीजें मिलेंगी, एक जन्नत मिलेगी उसको, और एक उसको मिलेगी दौलत, दौलत भी मिलेगी और जन्नत भी मिलेगी। तो पेपल आर्मी के अंदर लोगों ने तरजीहन भर्ती शुरू कर दी बनिस्बत के काउंट की फौज में जाने से। क्यों? क्योंकि काउंट उनको जन्नत नहीं दे सकता था। तो इससे क्या पता चला कि एक ब्यूरोक्रेसी जो थी वो तुम्हें दुनिया देने के गवाह, और वो जो दूसरी थी वो दुनिया भी दे रही थी और जन्नत भी दे रही थी, और तीसरी जो चीज़ थी वो ये कि अगर तुम गुनाह किए हुए तो गुनाह से माफ़ी भी, सेल्वेशन भी देगा, तीन चीज़ें तुम्हें देगा, जन्नत देगा, सेल्वेशन देगा और दौलत भी देगा। तो तुम एक्सपीडिशन करोगे तो ये नहीं कि ये मशहूर कर दिया कि लैंड रिच है, बहुत पैसे वाले हैं मुसलमान और ये और वो फला, तो और ये कि वो शैतान भी है, शैतान से तुम लड़ नहीं सकते। जिस तरह होता है ना हमारे यहाँ कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करने इमाम जामिन बांधा जाता है, तो सेक्युलर टाइप के लोग भी इमाम जामिन क्यों बांधते हैं? क्योंकि कहते हैं कि ठीक है, एक ऐसी बलाइयात, एक ऐसी बुराइयाँ जो मेरे सामने आएंगी उनसे तो मैं निमट सकता हूँ, लेकिन एक नादीदा जो बुराइयाँ हैं मेरे आने, तो वो इमाम जामिन की बुनियाद पर, तो अगर इमाम जामिन बांध लेंगे उसमें नुकसान क्या है? उसका फ़ायदा ही है ना कि कोई ना नज़र आने वाले हमले से भी उसको अल्लाह महफूज रखेगा। तो अगर आप डायरेक्टली होली घोष जिसके सर पे सवार हो उसकी फौज में ही आप शरीक हो जाओ, तो जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि ब्यूरोक्रेसी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव भी इम्पॉर्टेंट है। जो क्रिश्चियन ब्यूरोक्रेसी थी उसका बुनियादी दावा यह था कि तुम्हें वो दुनिया मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हारे लिए वो दुनिया इंपॉर्टेंट ही ना हो, तो तुम्हारे लिए वो ब्यूरोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगी। जैसे यूरोप अब मजहब के लिए लड़ना छोड़ दिया उन्होंने, या मजहब पे लड़ना उन्होंने छोड़ दिया, तो इससे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मजहब पे उन्होंने लड़ना इसलिए छोड़ दिया कि वो लोग टॉलरेंट हो गए और अमन पसंद हो गए। तो ये तो बिल्कुल झूठी बात है। अमन पसंद कहाँ हुए थे? मोहसिब कहाँ हुए? तो इंतहाई गैर मौजूद है। ये नहीं है 1960 में 50,000 अमेरिकन फौजी मारे गए कंबोडिया और वियतनाम में, वियतनाम में 50,000 अमरीकी फौजी मारे गए, तो वियतनामीज कितने मारे गए होंगे आपके साथ? मिलियंस के अंदर मारे गए कंबोडिया, वियतनाम और पानामा के अंदर, यानी कि बायोलॉजिकल वेपन्स उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, फॉस्फोरस बॉम्ब उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, और अपना क्या कहते हैं क्लस्टर बॉम्ब उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए, पूरी पूरी आबादियाँ जला दी, पूरी पूरी धान की खेतों के अंदर बायोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल करते थे, जब इंसान को चावल खाता था तो आंखें खड़ी जाती थी। आज तक एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं कंबोडिया वियतनाम के अंदर, आज तक 2013 तक। सही है, जंग हारने के बावजूद उन्होंने तकरीबन 4,00,000 आदमी मार दिए वहाँ पे, 0.4 मिलियन। अब आपके सामने इराक के अंदर 12,00,000 आदमी मरे हैं, 12,00,000 आदमी मरे हैं इराक के अंदर आपकी आँखों के सामने। सही है, आपके क्या कहते हैं ये जो है अल्जीरिया के अंदर फ्रांस में कितने लोगों को मारा है आपके सामने में, अफगानिस्तान के अंदर कितने लोगों को मारा है आपके सामने। तो पहली बात तो ये कि जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस होगी, उस चीज़ के लिए लड़ाई होगी। अगर फर्ज किया तुम्हारे लिए दुनिया इम्पॉर्टेंट ही नहीं है तो तुम लड़ोगे क्यों दुनिया के लिए, और अगर तुम्हारे लिए दीन इम्पॉर्टेंट ही है तो तुम दीन के लिए लड़ोगे ही क्यों, दीन के लिए वो लड़ेगा जो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिश्चियन पीरियड के अंदर दीन इम्पॉर्टेंट था, इसलिए लोग लड़ते थे दीन के। तो किसी मसले पे लड़ाई हो बंद हो जाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो मुअज्जब हो गए। हो सकता है कि यही वजह हो कि लड़ाई इसलिए नहीं हो रही हो कि मुअज्जब हो गए हो, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि वो चीज़ ही इम्पोर्टेंट आ रही हो उनके। फर्ज किया यहाँ पर एक डीसी पेजर आ गया, डीसी पेजर पता है तुम्हें क्या होता है, तुम्हें पता है, तुम्हें पता भाई, तुम्हें, तुम लोग जिस उम्र में आए हो क्योंकि तुम्हारी उम्र कम है, इसलिए डीसी पेजर एक छोटा सा या मोबाइल की तरह की एक चीज़ होती थी जिसमें मैसेज आता था, जिस तरह तुम्हारे मैसेज आते हैं उस तरह आता था वो। जैसे ही वो टेक्नोलॉजी आई तो डॉक्टर्स के पास आमतौर पे होता था, यस बड़े सिविल सर्वेंट्स के पास होता था, उन्हें फौरन वो मैसेज भेज देते थे। जैसे डॉक्टर के पास डीसी पेजर लगे होते थे बेल्ट के साथ, उसमें वो कहता था आप फला जगह रिपोर्ट करें, आप फला जगह पहुँचे। डीसी पेजर जो था वो जैसे ही आया उसके बाद मोबाइल फोन्स आ गए, सही है। तो जब मोबाइल फ़ोन आ गए तो आप मैसेज भी कर सकते हो, तुम कॉल डीसी पेजर से तुम खुद कांटेक्ट नहीं कर सकते, डीसी पेजर सिर्फ रिसीविंग एंड पे होता था, लेकिन मोबाइल फ़ोन में आप रिसीव भी कर सकते हो। तो अब अगर डीसी पेजर की तरफ जो ललचाई हुई और भूखी नज़रें होती थी इंसानों की, जैसे हम बच्चे थे तो उस वक्त को देखते थे जो कि जिनके पास होता था डीसी पेजर, वो एक अजीम हस्तियाँ होते थे, तो उसके ऊपर एक ललचाई हुई नज़रें इसलिए पड़ती थी कि वो कुछ के पास था और ज़्यादातर के पास नहीं था। लेकिन अब अगर डीसी पेजर आ जाए तो उसके ऊपर कोई लड़ेगा नहीं, कहेंगे फजूल चीज़ है भाई, क्या करूँ मैं इसका डीसी पेजर। तुम किसी को गिफ्ट कर दो डीसी पेजर, पुराने डीसी पेजर कहीं से तुम्हें मिल जाए और उनको तुम गिफ्ट करके किसी को दे दो शादी पर, वो खोलेंगे और तुम्हें गालियाँ बगेंगे, लिटरली तुम्हें गालियाँ बगेंगे कि ये जो है मुझे वो गिफ्ट दिया, मैं इससे डीसी पेजर का क्या करूँ। तुम बोलेंगे नहीं इससे कोई भी मैसेज आया तो डीसी पेजर की कंपनी ही ख़त्म हो गई, डीसी पेजर की कंपनी जब ख़त्म हो गई तो कौन भेजेगा मैसेज। वो लेके चला है कि भाई मैं डीसी पेजर का अकाउंट, सब हंसेंगे तुम पर। या तुम्हारे घर में VCR अगर तुम्हें कोई देते शादी में, जैसा हमारे यहाँ ज़रूर दिया जाता था अपना बहिश्ती जेवर और VCR ज़रूर दिया जाता है तो वो जो है और बहिश्ती जेवर जो है वो उसमें से कपड़े का जो वो गिलाफ होता था उसमें निकाल के वैसे ही रख दिया जाता था और VCR उसके अंदर डाल के लपेट दिया जाता था कि उसमें धूल मिट्टी ना चली जाए, और फिर वो करके उसको खोला जाता था और उसी के अंदर फिल्म डाली जाती बिस्मिल्लाह कह के और फिर उसको फिर लपेट कर दिया, समझे। लेकिन अब अगर किसी ने दे दिया VCR तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो फिल्म ही नहीं है, उसके अंदर डालोगे क्या तुम, वो तो फिल्म में ही आना बंद हो गए। तो अब अगर कोई कहे VCR के लिए लड़ाइयाँ होती थी भाई ख़ानदानों के बीच में, किराए की दुकानों पर झगड़े होते थे, किराए पे मिलता था VCR तो एक साथ 4-12 घंटे के लिए VCR मिलता था 200 रुपये का, तो वो जो ज़ियाउल्लाह के ज़माने में उस पर पाबंदी भी थी, तो बड़े बड़े सूटकेस के अंदर ऐसे सामान ले रहे जैसे आप दुबई से आ रहे उसके अंदर रख के दिया जाता था, तो वो 200 रुपये का। फिर पूरी रात बैठ गया सब लोग देखते रहते, पूरी रात आँखें बंद हो रही होती थी फिर भी देख रहे होते थे और फिर सब लोग थक के सो जाते। अब केबल 24 आवर्स आ रहा है, VCR कौन देखेगा 12 घंटे। तो VCR के ऊपर लड़ाई होनी बंद हो जाएगी, VCR पे लड़ाई होनी बंद होगी तो इसका मतलब है क्या, लोगों के लिए इररेलेवेंट हो गया VCR। लोग टॉलरेंट नहीं हुए, इररेलेवेंट हो गया। तो टॉलरेंस और इररेलेवेंस में फ़र्क होता है भाई। यूरोप में मज़हब पे लड़ाई इसलिए नहीं होती कि मज़हब इररेलेवेंट है, आपके यहाँ मज़हब पे लड़ाई होती है इसलिए कि वो रेलेवेंट है। इसी तरह यूरोप में भी लड़ाई होती थी क्योंकि वो रेलेवेंट है। ये अच्छी बात नहीं है लड़ना, लेकिन सवाल ये कि उस लड़ाई का हल आपने मज़हब के अंदर से निकाला है या मज़हब को ही निकाल के बाहर फेंक दिया। सवाल ये, पाकिस्तान के अंदर जो लड़ाई का मसला है वो ये नहीं है कि लड़ाई है, सवाल ये कि लड़ाई का हल मजहब के अंदर से तुम निकाल रहे हो या मजहब को ही निकाल दे रहे हो। ठीक है, तो पहली बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ाई अच्छी बात होती, सवाल ये है कि लड़ाई हो क्यों रही है, और दूसरी बात यह है कि लड़ाई का जो तुम हल निकाल रहे हो क्या कि वो मजहब के अंदर से निकाल रहे हो या नहीं। तो मजहब के अंदर से जब हल निकलेगा तो मजहब जिंदा रहेगा और लड़ाई खत्म हो जाएगी, तब हम ये कहेंगे कि टॉलरेट कर रहे हो, तब हम ये कहेंगे कि टॉलरेंस पैदा हुई है, तब हम ये कहेंगे। मैं आपको बताऊं, माइकल मैन की किताब है, उसका पहला चैप्टर है पूरा मुसलमानों के ऊपर उसने लिखा है, और आप हैरान रह जाएंगे पढ़कर कि वो माइकल मैन जो जरा सा रहम नहीं खाता, वो एक्सप्लिसिटली उसने लिखा है कि स्पेन के अंदर मुसलमानों को जब शिकस्त हुई तो मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन क्या थी स्पेन के अंदर, मुसलमानों के अंदर 700 इयर्स तक उन्होंने एक बार भी क्लेंजिंग नहीं की। वो कहता है ना रिलीजियस क्लेंजिंग की ना एथनिक क्लेंजिंग की, ना जबरदस्ती लोगों को मुसलमान किया ना कत्ल किया लोगों, 700 इयर्स तक। और आप आज जो है मुसलमानों की जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि ये इंटॉलरेंट होते हैं, और जब मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई और एज़ाबीला ने और ये जो है फर्डिनेंड ने जो है वो काबू किया, तो उन्होंने यहूदियों के साथ और मुसलमानों के साथ और वो क्रिश्चियन जो के मुसलमान हो गए थे उनके साथ जो किया है इंक्विजिशन के नाम पर, वो आप तस्वीर नहीं कर सकते। 50,000 आदमी कत्ल किए, और ये सारे भागकर कहाँ गए, यहूदी सारे भागकर कहाँ गए, ये सारे भागकर गए हैं ऑटोमन्स के पास, ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर ने उनको एब्जॉर्ब किया और उनकी हिफाजत की, और उन्होंने उनको कभी ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं किया यहूदियों को। जेंटाइल ज्यूज़ जो हैं वो हैं टर्क्स इलाकों के अंदर आज तक, जेंटाइल ज्यूज़ वो ज्यूज़ कहलाते हैं जो हज़रत मूसा के ज़माने से अपने आप को यहूदी कहते हैं। मुसलमानों ने यहूदियों को अपने दरमियान रहने दिया और इस बात पर नहीं डरे कि यहूदी हमें यहूदी कर लेंगे, लेकिन क्रिश्चियंस जब भी किसी इलाके में यहूदियों को देखते थे या तो उनको कत्ल करवा देते थे या उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराते थे या निकाल के बाहर कर देते थे, और वो कहते थे कि क्रिश्चियन फेथ कंटेमिनेट होता है। तो जो जितने भी तुम आइडियाज सुनते हो ना, कंटेमिनेशन हो गया, कंटेमिनेशन ऑफ आइडियाज हो गया, कंटेमिनेशन ऑफ फेथ हो गया, या प्यूरिटेनिकलिज्म है, ये मुसलमानों की तारीख नहीं रही। मुसलमान इस तरह नहीं डरते थे किसी दूसरे मज़हब के साथ, और उनकी जितनी भी तारीख है उनमें बाद जगहों पर उन्होंने 1,000 साल भी रूल किया है, लेकिन वो माइनॉरिटी में रहे। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि वो माइनॉरिटी में रहे, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया जो कि क्रिश्चियंस ने किया। इसकी बुनियादी वजह ये है कि उनके पास वो ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशनल क्लेंजिंग मैकेनिज्म ही नहीं थे मुसलमानों के पास जो कि क्रिश्चियंस के पास थे। यानी कि इस्लाम कभी भी इस तरह ब्यूरोक्रेटाइज नहीं था। मसलन ये कि इस्लाम तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम की तशरी क्या होगी असल में, उसका कोई इदारा नहीं था मुसलमानों के अंदर जो बताए कि भाई तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम का अब ये है कि एक आदमी के खपतू दिमाग के अंदर कोई भी ख्याल आया और से मुसल्लत कर दिया सबके ऊपर। ऐसा खलीफा भी नहीं कर सकता था, ये नहीं कि खलीफा के दिमाग में कुछ भी आ गया वो करना शुरू कर दिया सबने, ऐसा नहीं किया मुसलमान। तो पहली बात मैंने आपको ये बताई कि ब्यूरोक्रेसी, जो तुम्हारा क्वेश्चन है, कम टू द पॉइंट, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि भाई इस ब्यूरोक्रेसी में भी अगर आज़ादी छीनी जाती है और उस आज़ादी में भी आज़ादी छीनी जाती है तो दोनों आज़ादियों के छीने जाने का इदराक क्यों नहीं है, एक्वेंटेंस क्यों नहीं है। तो ये बात नहीं है कि दोनों तरह की ब्यूरोक्रेसीज मौजूद हैं। मैंने क्रिश्चियन एग्जांपल इसलिए दी कि मैं क्रिश्चियन से कंपेयर कर रहा हूँ सेक्युलर ब्यूरोक्रेसी को, क्यों मुसलमानों के अंदर उस तरह की ब्यूरोक्रेसी नहीं रही। मुसलमानों में उलमा का तबका नहीं था, ये तबका नहीं होता मुसलमानों के, ये तो हमारे यहाँ बड़े फख्र से कहते हैं उलमा का तबका, उलमा खुद ही अपने सर पे अरे भाई उलमा कोई तबका थोड़ी होते हैं, बेशुमार आलिम होते हैं जो आलिम होते हैं लेकिन उनका प्रोफेशन कुछ और होता है। एक आलिम दीन है लेकिन उसका प्रोफेशन कुछ और है, लेकिन वो आलिम है। पूरी मुसलमानों की तारीख में ये नहीं, हजरत अली का पेशा था क्या ये इस्लाम के बारे में बताया था, या हजरत उमर का पेशा था, या हजरत अबू बकर का पेशा था, ये शेख थे ना भाई, सारे के सारे शेख है ना सब। अब मुज्तहिद भी हैं, शेख भी हैं, लेकिन पेशा थोड़ी था उनका, इस्लाम को जानना कोई पेशा थोड़ी होता है भाई। एक आदमी कसाई की दुकान खोल सकता है लेकिन वो आलिम दीन भी हो सकता है, लेकिन वो नौकरी करेगा कसाई की दुकान पर, लेकिन वो पेशे के एतबार से कसाई है लेकिन आलिम दीन है, या हलवा हलवे हलवा बना के बेचता है लेकिन वो आलिम दीन हो सकता है। तो तबका नहीं होता, उलमा कोई तबका वक्का नहीं होते भाई, लेकिन क्लर्जी तबका थी, तबका थी वो, एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन प्योर मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी इट वॉज ए क्लास, बट इन इस्लाम देर इज नो क्लास ऑफ उलमा, उलमा की कोई क्लास व्लास नहीं होती थी भाई।
लेकिन ये जो मतलब क्लर्जी की जो क्लास थी, तो जाहिर है इसमें इनका पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं,
बिल्कुल सही बात,
मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करते,
बिल्कुल सही बात है। और जो जिस पे कम टू द पॉइंट, वो ये कहते थे कि भाई हम जो है इस ब्यूरोक्रेसी के नतीजे में तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, हमारा डिसिप्लिन तुम इख्तियार करोगे, चर्च की बात मानोगे तो चर्च तुम्हें क्या ले देगा, तुम्हें जन्नत तक पहुंचा देगा। हम जिम्मेदारी लेते हैं प्रोटेक्शन ऑफ योर सोल, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर सोल एंड द किंग इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर स्टेट, ESTATET, यानी कि तुम्हारी लैंड और तुम्हारे मफादात का तहफ़ कौन करेगा, किंग करेगा, लेकिन तुम्हारी सोल और तुम्हारी फेथ की हिफाजत करेंगी हम। तो चूंकि सोल जिंदा रहती है और जिसम मर जाता है, इसलिए हाँ पोप को फौकियत होगी और किंग उसके नीचे होगा, क्योंकि तुम्हारी रूह जिंदा रहेगी और तुम्हारा जिसम मर जाएगा, तो जाहिर है कि तुम्हें खर्ची उसको देनी चाहिए। लिहाजा चर्च की ब्यूरोक्रेसी जिस मफाद का तहफ़ करती थी, वो मफाद ही अगर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ना हो, तुमको नहीं मुझे अपनी सोल को बचाना ही नहीं है, तो फिर इर्रेलेवेंट हो गई। वो कह नहीं तुम जहन्नम में जाओगे, हाँ मैं जहन्नम में जाऊँगा, अच्छा है मैं जहन्नम में जाना पसंद करता हूँ, मैं शैतान एंटी क्राइस्ट मूवमेंट खड़ी हो कर ले अपने, हज़रत ईसा की जो क्रॉस है उसको उल्टा कर दे, हज़रत ईसा के सर ऊपर कर दे और पैर नीचे कर दे, तौहीन कर दे हज़रत ईसा की और चर्च बना दे,
लेकिन ये
और शैतान की परस्तिश के चर्च बना दे और उसी माशरे में वो चर्च रहें, एंटी क्राइस्ट गैदरिंग्स हों जिसके अंदर मिलकर मुश्तरक तौर पर शैतान की परस्तिश की जाए। हज़रत ईसा से कि को शिकस्त किसने दी, हज़रत ईसा को शिकस्त हुई ना, हज़रत ईसा को फांसी हो गई, तो किसने करवाई फांसी, शैतान ने करवाई ना, इसका मतलब शैतान ज़्यादा ताकतवर है, तो शैतान से हाथ मिला लेता हूँ, शेक हैंड विद शेक। तो जो आप जब सिफिली करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपनी रूह को शैतान के हवाले कर देते हैं, शैतान फिर आपको धोखा नहीं देता, फिर आपको ताकत देता है, लेकिन अल्लाह की आपने मदद की जरूरी नहीं आपको ताकत दे, आपको शहीद भी करवा देता है जरूरी नहीं कि आपने अल्लाह की मदद की, अब अल्लाह ने हमेशा हर एक को सुपरमैन बनाए, तो तरह तो हर आदमी सुपरमैन, अल्लाह ने मैं आपका वो बनना चाहता हूँ, तो बस सही, अल्लाह ने फौरन सुपरमैन बनाया, हर एक को सुपरमैन बनाया, पूरी मुसलमान वर्ल्ड है उधर से उतर इधर से उतर, ऐसा नहीं होता। अल्लाह मियाँ के मान लेने के बावजूद भी लोग शहीद हो जाते, लोग नाकाम हो जाते।
अच्छा ये जो इनका जो सवाल था कि ब्यूरोक्रेसी जो है मतलब ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है मॉडर्न लिबरल स्ट्रक्चर जो है वो आज़ादी छीनते हैं, लेकिन उसका इतराज जो है मॉडर्न मैन को क्यों नहीं हो पाता, मतलब और वो जो आज़ादी छीनता था उसका इतराज होता है, यहाँ ये मजहबी जो है ये आज़ादी छीनता है उसका इतराज होता है, तो क्या इसका इसका समझ ये नहीं कि मॉडर्निज्म ने ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस की है तो वो आज़ादी के अल्तबास को बरकरार रखती है।
पहली बात तो ये है कि मॉडर्निज्म ये कहता है यानी कि मॉडर्न सेकुलर ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जहाँ जो जिसको हमें फोकस करना, मैं इसको अच्छी तरह प्रॉब्लमेटाइज इसलिए करना चाह रहा हूँ, वो कहता है कि ये डिसिप्लिन अगर तुमने इख्तियार किया, मज़हब का डिसिप्लिन इख्तियार किया, तो खुदा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन खुदा की रज़ा तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुर्बान करनी पड़ेगी अपनी आज़ादी, ठीक है। लेकिन अगर तुमने लिबरल डिसिप्लिन इख्तियार किया तो उसके नतीजे में तुम्हें मिलेगी आज़ादी। सरमाए का डिसिप्लिन तुम्हें देता है सरमाया, और मज़हब का डिसिप्लिन देता है तुम्हें रज़ाए इलाही। तो रज़ाए इलाही के नतीजे में तुम ये थोड़ी अय्याशियाँ कर सकते हो अल्लाह की रज़ा में। अब ये तुम अल्लाह की रज़ा में से निकालते रहो कि अल्लाह ने अगर मेरे से राज़ी हो जाएगा तो मुझे बहुत सारे पैसे देगा, बहुत सारा मैं पूरी दुनिया में घूमूंगा, ये हो सकता है अल्लाह ने किसी से राज़ी हो लेकिन वो कहीं ना जा सके, उसको कोई पैसे ना मिले, ये मुमकिन है। अब हम तो अल्लाह ने वो कंडीशन नहीं कर सकते, लेकिन सरमाया को हम कंडीशन कर सकते हैं कि अगर मैंने सरमाया का डिसिप्लिन इख्तियार किया तो सरमाया ज़रूर मुझे मिलेगा। लेकिन ये दोनों ईमान की ही सतह पर होते हैं। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे के पैदाइश के 3 साल बाद आप उसे जिस डिसिप्लिन में झोंकते हैं वो सरमाया का डिसिप्लिन है ना, तो 3 साल से लेकर फिर 17 साल की उम्र तक वो मुस्तकिल डिसिप्लिन के अंदर रहता है। किस बुनियाद पे आप उसको सुबह से शाम तक भेज देते
दूसरा ये मतलब कैपिटल यानी ये पैसा क्या नहीं कहा कि खुदा को तो हम डिसिप्लिन नहीं कर सकते, लेकिन अगर सरमाया का डिसिप्लिन इख्तियार करें तो सरमाया हमें जो है तमत्तो करने देता है। लेकिन उसमें भी तो कोई मसला है कि मतलब ये कि यानी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो तमत्तो तो इसमें भी नहीं होता। एंग्जाइटी और सबसे ज़्यादा जो आपने शुरू में कहा एंग्जाइटी और डिप्रेशन और सुसाइड और ये तो सब इसी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा है।
एग्जैक्टली, ये हम आखिर में लेके बताएंगे। हम सिर्फ अभी ये बता रहे हैं कि लोग ये समझते हैं कि अगर एक आदमी हार्वर्ड से पढ़ के आ गया है, जैसे कराची यूनिवर्सिटी में नहीं, पाकिस्तान के जिस इंस्टीट्यूशन, इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने लम्स के अंदर भी स्टूडेंट से पूछा कि वो इस इदारे में आके मुतमईन और खुश हैं या नहीं, तो वो नाखुश थे। सही है, लम्स के स्टूडेंट से मैंने पूछा कि भाई अगर खाना खा रहे थे हम लोग तो वहाँ बैठे हुए थे वो लोग, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर 10 करोड़ रुपये मिल गए अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो तो तुम कहाँ पढ़ना पसंद करोगे, तो उसने कहा मैं हार्वर्ड जाऊँ। ऐसी क्या पता हार्वर्ड, बस उसको पता है कि हार्वर्ड जाने के नतीजे में मेरी माशरती कदर में ऐसा इजाफा होगा कि सब हैरान रहेंगे। यानी कि कराची यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देती है सोशल साइंसेस के अंदर, उसी कॉस्ट है अगर उसकी पूरी पूरे पैसे आप मिला लें, यानी कि यानी कि फर्स्ट ईयर से लेकर पीएचडी तक, फर्स्ट ईयर से लेकर पीएचडी तक अगर हम पैसा खर्च कर दें जितना, तो उसमें वो डिग्री आपको पड़ती है तमाम अपने खर्चों को निकाल कर। चलो अब हम उसको कंपेयर कर लेते हैं मास्टर्स से, एमएस तक या एमए तक 4 साल के अंदर उसके उसका खर्चा होता है 8,000 रुपये, 2,000 रुपये पर सेमेस्टर, 2,000 8,000 ये और 8,000 वो, 16,000 रुपये में आपको डिग्री देता है सोशल साइंसेस की कराची यूनिवर्सिटी, और किंग्स कॉलेज देता है 35 लाख रुपये की, 35 लाख। और जो टीचिंग वो होता है वो 3 साल में देता है, और कराची यूनिवर्सिटी 4 साल पढ़ाने के बाद आपको देती है। तो हमारे एक जानने वाले उनका जो दामाद था वो जा रहा था, तो मैंने उससे कहा, उनसे कहा कि सोशल साइंसेज में पढ़ने जा रहा है तो आप ऐसा करें जो कराची यूनिवर्सिटी में भेज दें, इसका अच्छा बैकग्राउंड है, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है, मेहनती लड़का है, ही विल बी वेरी सक्सेसफुल, बहुत आराम से पोजिशन ले लेगा, और जब अभी ये यंग भी है फिर ये चला जाए, फिर चले पीएचडी करने, आप फिर भेज दीजिएगा बाहर। नहीं जी, वो नहीं माना, खैर जी उन्होंने उसको भेज दिया बाहर। किंग्स कॉलेज से उसने डिग्री की स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के अंदर,
35 लाख रुपए उसके खर्च हुए। उसके बाद वो एक मुहिब वतन लड़का था, क्योंकि उनका बैकग्राउंड फोर्सेस वगैरह का था, उसके वालिद का इंतकाल हो गया था लेकिन उनका बैकग्राउंड फोर्सेस का है, तो वो मुहिब वतन भी था, वापस आ गया। वो वापस आने का उसे कोई जॉब ही नहीं मिली, ओवर क्वालिफाइड था वो। इधर उधर धक्के खाने के बाद उसने उसको 25,000 रुपए की जॉब मिली, जिसके नतीजे में लोगों ने उसको ताने मार मार के मेंटली डिस्टर्ब कर दिया उसको। देखें, किसी चीज़ की कॉस्ट अगर आप उससे ज़्यादा पे करते हैं ना, तो फिर आपका स्टेट ऑफ माइंड नॉर्मल नहीं रहता। 35 लाख रुपये उसे हाउंड करते थे, उसे अपनी माँ को पे बैक करना है। उसी माँ ने जो अपनी जमा पूंजी थी सब लगा दी उसके ऊपर, सब कुछ लगा दिया। और क्या डिग्री लेके आप पहनते, ये वो कैसे उसने किया, ये ऐसा क्या पढ़ा देंगे सोशल साइंसेस में, बोलो किंग्स कॉलेज में क्या पढ़ा देंगे भाई, वो कौन सी तोप चला दे। चलो भाई मैं कहता हूँ कि न्यूक्लियर फिजिक्स में वो कर रहा था, पाकिस्तान में आप कहेंगे भाई इदारों के पास वो इक्विपमेंट नहीं है, वो फैसिलिटीज नहीं है साइंसेस के अंदर, सोशल साइंसेस में ऐसा क्या है भाई। लेकिन वो इसलिए जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि ये डिसिप्लिन इख्तियार करने के बाद मेरी आज़ादी में इजाफा ज़्यादा होगा, ईमान होता है। देखें, जब भी आपको कुछ मिलने वाला होता है तो मिलता तो बहुत दिन बाद ही है, यानी कि मरने के बाद ही पता चलेगा ना अल्लाह मियां ने क्या फैसला करना है आपके। तो यहाँ पे कौन सा मरने से पहले पता चल जाता है, यहाँ पर भी तो 20 साल बाद तो पता चलता है ना कि तुमने सही एजुकेशन हासिल की या नहीं हासिल।
और दूसरी बात ये है कि वो एक सेक्युलरिटी को भी कह रही है कि ठीक है यार तुम अपना दीन भी फॉलो कर लो, हम वो अकोमोडेट कर लेंगे। मैं जिस तरह अभी पिछले साल गया सैन फ्रांसिस्को, तो वहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैंने बेनल को बोला मुझे दिखाओ जरा कैसे, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक अलग ही माहौल था वहाँ। मतलब एक तो खूबसूरत पुरानी 200-300 साल पुरानी बिल्डिंग, फिर बिल्कुल पैसिफिक ओशन के साथ खूबसूरत वेदर, फिर एक साइकिल पर एक लड़की शॉर्ट्स पहन के साइकिलिंग करते हुए जा रही, फिर यहाँ से एक खूबसूरत लड़की गुजरी, फिर वहाँ से खूबसूरत लड़की गुजरी, लड़के आपस में लड़के लड़कियाँ ग्रुप में बैठे हुए हैं, और ये भी ऑर्गेनाइजेशन में छाप लगी हुई है कि इसमें सबसे बड़ा यहाँ जो मगरब का आलम है वो यहीं से निकलेगा। तो एस्थेटिकली वो चीज़ मुझे बहुत अपीलिंग लग रही, क्योंकि एस्थेटिक्स को
इग्नोर नहीं किया,
हालांकि वो डिसिप्लिन तो वही पढ़ा के निकाल रहे हैं, उसके बाद में किसी US थिंक टैंक में या पाकिस्तान में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में आकर लोगों को बताऊंगा ग्लोबल वॉर ऑन टेरर को कैसे डिफीट करना है लिबरल वैल्यूज क्रिएट करने से, यही मुझे पढ़ा के भेजेंगे ना वहाँ से, जब मैं आऊँगा तो यही काम करूँगा, यही कर रहे हैं लड़के जिस तरह उठ के आगे, वो यही काम करेंगे पाकिस्तान में आके। लेकिन वो एस्थेटिकली ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत आज़ादाना माहौल में हूँ, एस्थेटिकली अपीलिंग भी है, लड़कियाँ भी खूबसूरत है यहाँ पर, मैं यहाँ पर बहुत आज़ादी से रहूँगा, माँ बाप को जवाब भी देना, माँ बाप खुश भी हो रहे हैं, रात को लेट भी नहीं आना, यहीं पर बैठा रहूँगा, और बिल्डिंग भी खूबसूरत है, लेकिन मैं हूँ निकला मैं वही फैक्ट्री का प्रोडक्ट हूँ।
ये सब चीज़ों को हम एट लेंथ डिस्कस करें, लेकिन पहले जो बॉटम लाइन है वो ये कि मैंने आज जो अब तक गुफ्तगू की, अगर हम उसको समराइज करें, पहली बात मैंने ये बताई आपको कि जो रेडिकल कन्फॉर्मिज्म है वो ये कहता है कि सड़े गले निज़ाम को ख़त्म करके नया निज़ाम नाफिज करना है, इस पर कंसेंसस है। इस कंसेंसस के लिए जो आपका ऑडियंस है वो कैसी ऑडियंस है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, यूथ है, यूथ के स्टेक्स कम होते हैं सिस्टम्स के अंदर। तो पाकिस्तान और ईरान और इंडोनेशिया और मोगादेशो और यहाँ पर मेजर पॉपुलेशन जवान लोगों की है, तो चूंकि जवान लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए जवान आदमी को नई चीज़ अच्छी लगती है, तो वो उसे ये कन्वेंस कर दिया है कि तुम रेडिकल होना चाहिए तुम्हें इस सड़े गले निज़ाम के साथ।
रेडिकल ये हो गया मतलब रेडिकलिज्म जो है वो एंटी रिलीजनिज्म
नहीं है, एंटी रिलीजन नहीं है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के नाम पर जो चीज़ उसके सामने पेश की जाती है वो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं आपकी।
तो वो रेडिकल आदमी के, अगर फ़र्ज़ किया कि आप अपने आप को बड़ा रेडिकल बना के पेश कर रहे हैं लेकिन आप नमाज पढ़ने चले जाते हो, तो आप एक तरह के कन्फॉर्मिस्ट भी हो, है कन्फॉर्मिज्म है ना, कि मैं हाथ बांध के खड़ा हूँ, वो झुक रहा है तो मैं झुक रहा हूँ, और वो गलत भी पढ़ रहा है तो मैं पीछे डर डर के कि पता नहीं मैं ही तो गलत नहीं पढ़ रहा, अल्लाह आहिस्ता से, लेकिन आमतौर पर सारे लोग वही कर लेते हैं जो हजरत साहब कर रहे होते हैं ना, इस तरह होता है ना। तो कहेंगे यार किस तरह का रेडिकल आदमी है ये, जो वो है कन्फॉर्मिस्ट है ये, या ये कि वो कहें उसको जब शराब पेश की जाए नहीं है मैं तो शराब नहीं पीता, या ये कहे कि ये मैं ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, इसका मतलब है ओपन नहीं है ये, लिहाजा इसको काटो।
रेडिकल कन्फॉर्मिज्म सिर्फ ये मतलब है इस्लामी खत्म का फिनोमेना
नहीं, हर जगह का है, लेकिन इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ को ही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मगरिब के अंदर जो पढ़ लिख के निकलता है ना आदमी मगरिब की यूनिवर्सिटीज़ से, उसके बारे में रिचर्ड रॉटी का ये कहना है जो मगरिब से वाकई पढ़ के निकलता है, जेन्युइनली पढ़ के निकलता है, वो ये कहता है रॉटी के दो किस्म के फीलिंग्स लेकर पैदा होता है निकलता है, एक सेल्फ मॉन्करिंग और एक सेल्फ डिस्कस्टिंग, अपने आप से उसे घिन आती है। वो कहता है कि हम लोग कौन है, जो हमने क्या किया है ये इंसान लोग के साथ, जब वो हाई प्रोफाइल डिस्कोर्स में जाता है, गहरी डिस्कोर्स में जाता है तो दिमाग उलट जाता है उसका, यानी कि आप, मैं आपको यकीन, आप डिलूस की किताब 1000 Plateus उठाएं, उसका प्रीफेस पढ़ें तो गालियाँ लिखी हुई हैं, लिटरली गालियाँ, गालियाँ लिखी हुई उसने प्रीफेस के अंदर पूरी वेस्टर्न फिलोसफी को, और फलसफी है खुद वेस्टर्न फिलोसफी को गालियाँ बककर फलसफा लिखना शुरू करता है वो, तो प्रोडक्ट है ना भाई वो। जेजैक को आप पढ़ें, गालियाँ देता है इंटरव्यूज के अंदर, गालियाँ बकना शुरू कर देता है, ये फर्स्ट लेयर इंटेलिजेंशिया का दिमाग है ऐसा। इसका मतलब है फर्स्ट लेयर इंटेलिजेंशिया तो वैल्यू नहीं कर रहा,
ये जो है मतलब गालियाँ देने के बावजूद लेकिन वो जो कन्फर्म करते हैं वो तो उसी
मसला को नहीं, मसला ये है कि इन लोगों की, इन लोगों के कहने के ऊपर थोड़ी निज़ाम चलता है, इन लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए छोड़ देते हैं,
नहीं मतलब ये खुद जब ये इतनी गालियाँ भरते हैं लेकिन ये कि जो निज़ाम की तनकीद पेश करते हैं तो उससे तो निज़ाम ही एक्सटेंड होता है, और
ये बात जाहिर है कि प्रॉब्लमेटिक है, ये तो हम एतराज़ करते हैं, लेकिन ये कि वहाँ के लोग ये कहते हैं कि ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं माशरे की, शिराजा बंदी को नुकसान पहुँचा रहे हैं वगैरह वगैरह, ईमान को कमज़ोर करते हैं, इसीलिए रॉटी ने वो किताब लिखी अचीविंग आर कंट्री के, भाई अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो खुदा के वास्ते हमें अपने आप को हम माफ़ कर देते हैं, वो उसके अल्फाज हैं रॉटी के, इफ़ वी डिड समथिंग रॉन्ग व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, वी आर गोइंग टू फॉरगिव आवरसेल्व्स, व्हाई, बिकॉज व्हाट एवर वी वर डूइंग टू प्लीज आवरसेल्व्स, वी वर नॉट डूइंग टू प्लीज समवन एल्स, सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक दैट इफ वी डिड समथिंग रॉन्ग वी आर गोइंग टू फॉरगिव आवरसेल्व्स, जब मैं खुदा के लिए कुछ करूँगा तो फिर मुझे खुदा माफ़ करेगा ना, लेकिन अगर मैं कोई काम अपने ही लिए कर रहा हूँ तो फिर मुझे अपने आप को ही माफ़ करना पड़ेगा ना, तो वो कहता है भाई अपने आप को माफ़ कर दो, तुम खुद ही तो खुदा हो, उस वक्त तुम ये कर रहे थे, तुम ये कर रहे हो, तो रॉटी को ये किताब इसलिए लिखनी पड़ी। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम सब पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी की जो इंटेलिजेंशिया बड़ी कन्फॉर्मिस्ट है, पाकिस्तान के जितने भी लिबरल इंटेलिजेंशिया उठा के देख लें उनको, क्या है उनके अंदर, सड़े गले वही तसव्वुरात, वही पिटे हुए तसव्वुरात, आज़ादी और औरतों की आज़ादी, अबे बताओ ना भाई कौन सी आज़ादी, सरमाए के अंदर कौन सी आज़ादी, तो अगर फर्ज़ किया सरमाए का वो समझेंगे लेफ्टिस्ट, तो इनके पास कुछ कैटेगरीज हैं उसमें डाल देते हैं फौरन कि भाई अगर आपने सरमाए का, अरे लेफ्ट का आदमी है, चलो भाई लेफ्ट की कैटेगरी में डाल दिया इसको, इसकी कैटेगरी, तो तुम पाकिस्तान में जो लिबरल इंटेलिजेंसिया पैदा किया, पाकिस्तान में वो बड़े दिमाग पैदा हुए हैं, अगर आप उनको देखें तो उनकी रूट्स लिबरल नहीं है एक की भी, अल्लामा इकबाल बड़े आदमी हैं, अल्लामा इकबाल लिबरल आदमी नहीं है भाई, 100% ही इज़ नॉट अ लिबरल मैन, क्यों, क्योंकि उनका जो इंटेलेक्ट है वो थ्रेशोल्ड तो है उसके अंदर आज़ादी वगैरह, लेकिन वो उससे आज़ादी है, गुलामी से आज़ादी है, गुलामी
ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो मजहबी,
ओवरऑल उसका जो रुझान है वो मजहबी है। आप फैज़ को आप ले लें जो सेक्युलर आदमी है, लेकिन फैज़ लिबरल नहीं है, फैज़ के साथ बड़ी ज्यादती करती है पाकिस्तान की लिबरल इंटेलिजेंशिया जब उसे लिबरल थिंकर बना के पेश करते हो, तो बिल्कुल 100% मार्क्सिस्ट आदमी है, वो तो कह रहा है मारो इनको। लेकिन जाहिर है कि फैज़ की थॉट अगर मजहबी लोगों के खिलाफ है तो वो सरमायादार के भी खिलाफ है भाई, और सरमायादार लिबरल होते हैं, तो वो शायद मजहबी आदमी को फिर भी छोड़ दे, लिबरल को नहीं छोड़ेगा। सर सैयद भी नहीं है। अच्छा तीसरा जो बड़ा आदमी है, बहरहाल उस पर लोग डिस्प्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कम अज़ कम उसे बड़ा आदमी समझता हूँ, अपना अशफाक अहमद मशहूर है, लेकिन ही इज नॉट लिबरल मैन, इज नॉट, वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का ट्रेडिशनलिस्ट है, रिवायती आदमी है, और इतनी यानी कि विजडम है उसके अंदर, यानी कि इतनी विजडम है उसके अंदर, लेकिन आप उस विजडम में जब जाएंगे ना तो उसका जो ओवरऑल फ्लेवर होगा वो मजहबियत आप पे तार। वो कहता है उसके मैं कहता है कि हम खुशनसीब हैं क्योंकि हम खुदा को मानते हैं, लेकिन हम लोग बदनसीब इसलिए हैं कि खुदा की एक नहीं मानते। तो मतलब अगर तुम खुदा की मानोगे तो कैसे आज़ाद होगे? तो वो आज़ादी के ऊपर पूरा उसका डिस्कोर्स है, वो इस फ्रीडम फ्रीडम को इल्यूजनरी समझता है। तो बताने का मतलब ये है कि ये जितना भी डिस्कोर्स है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर, उसके जो बड़े आदमी हैं वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, भाई जिस फ्रीडम को तुम फ्रीडम कह रहे हो वो इल्यूजनरी है, इल्यूजन है उसमें।
अच्छा दूसरी जो है मतलब जो इन्होंने सवाल उठाया उसमें बुनियादी मसला ये है कि अगर जैसा कि फ्रीडम तो है ही नहीं, मतलब वो तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है मतलब, लेकिन उसके यानी इस मौक़ को बयान करने वाला कोई इदारा भी तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो जो इदारे हैं जो बयान कर सकते हैं वो तो उसके बारे में या तो
खामोश हैं, नहीं कंट्रोल्ड है,
नहीं मतलब जो इदारे यानी सभी इदारे फॉर एग्जाम्पल वो या तो खामोश हैं या उसी को एंडोर्स कर देते हैं, तो जाहिर है कि तो जब फ्रीडम का कोई अपोनेंट ही नहीं है तो वो एक्सप्लोर कैसे होगी?
बिल्कुल सही बात है, मतलब कम से कम ये तो बताएं कि भाई ये जिस चीज़ को तुम फ्रीडम कह रहे हो, यानी कि हम पिछले 15 और 16 बल्कि 20 साल से जो कोशिश कर रहे हैं वो यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक है आप फ्रीडम के मत वाले हो, तो भाई ये तो देख लो कि ये जो जिस चीज़ को तुम फ्रीडम के नाम पर पेश करते हो फ्रीडम होती भी है कि नहीं, वो फ्रीडम होती भी है या नहीं। तो हम इस पूरे जो थीसिस है उसके अंदर हम यही इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे और कि भाई जो है वो फ्रीडम है या नहीं। मसलन जो है जैसे अब मैं जो जो चार यानी कि हमने बातें डिस्कस की हैं वो ये बातें डिस्कस की हैं कि पहले हमने बताया कि कन्फॉर्मिज्म और रेडिकलिज्म का एक कॉन्ट्रडिक्ट्री इम्तजाज, यानी कि ये ऑक्सीमोरोनिक आइडिया है कि दो इनकम्पैटिबल आइडियाज़ को एक साथ पेश कर दिया जाए। तो जाहिर है कि जब मैं कहता हूँ कन्फॉर्मिस्ट रेडिकलिज्म तो कन्फॉर्मिज्म तो रेडिकलिज्म के ख़िलाफ़ है और रेडिकलिज्म कन्फॉर्मिज्म के ख़िलाफ़ है, लेकिन वन साइडेड रेडिकलिज्म है और वन साइडेड कन्फॉर्मिटी है जो कि बज़ाहिर म्यूचुअली कम्पैटिबल लगने लगे, कि आप रेडिकल तो होंगे इस्लाम के ख़िलाफ़ और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़, लेकिन आप कन्फॉर्मिस्ट होंगे लिबरल वैल्यूज़ की तरफ और लिबरल इंस्टीट्यूशंस की तरफ, और आप इस्लाम और खुदा और रसूल और कुरान और सुन्ना के माखज़ात को एज अ सोर्स ऑफ लॉ के बनाने के बारे में स्केप्टिकल या एग्नोस्टिक तो होंगे, लेकिन लिबरल सेकुलर फाउंडेशंस को सोर्स ऑफ द लॉ बनाने के बारे में बड़े कन्फॉर्मिस्ट होंगे। इसी तरीके से आप इस्लामिक इंस्टीट्यूशन की वायबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी और उसके नतीजे में पैदा होने वाले तजादात को तो बिल्कुल उनके बारे में इनटॉलरेंट है, लेकिन लिबरल ऑर्डर और लिबरलिज्म के कॉरस्पॉन्डिंग सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के नतीजे में पैदा होने वाली कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में टॉलरेंट, और आप कहते हैं नहीं इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाए, भाई इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो खिलाफत भी ठीक हो जाएगी, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बादशाह भी ठीक हो जाएगी, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सभी ठीक हो जाएगा, और इवेंचुअली तो तुम मर ही जाओगे। तो तुम्हारी जिंदगी में तो क्या ठीक हुआ? नहीं तो इसका मतलब है बुनियादी लड़ाई तो इस बात की है कि किस निजाम के ऊपर मेरा ईमान है। तो ईमान जो होता है ना भाई, कभी भी स्टेगनेंट चीज नहीं है। हजरत यानी कि शाह वलीउल्लाह कह रहा हूँ अपना इमाम गजाली ये कहते हैं कि भाई ये जो ईमान होता है ना, ये किसी भी वक्त रुखसत हो सकता है और ईमान किसी भी वक्त आ सकता है। लिहाजा जिसके पास ईमान नहीं है उसको नफरत की नज़र से नहीं देखो, किसी वक्त वो साहिब ईमान हो सकता है, और अपने ईमान पे ज़्यादा तकब्बुर नहीं, किसी भी वक्त रुखसत हो सकता है। तो डरते रहो अपने ईमान के बारे में, और वो स्टेगनेंट चीज़ नहीं है कि गारंटी हो गया बस आप हमेशा रहो। मरने तक हमला करता है शैतान, आखिरी वक्त तक हमला करता है, यानी कि जब जान निकल रही होती है उस वक्त आ जाता है माँ बाप की शक्ल में, आगे खड़ा हो जाता है, कहता है सब बेटा सब झूठ है, कोई नहीं है खुदा वुदा, मैं तो देख ऐसे ही घूम रही हूँ, कोई खुदा वुदा नहीं है, फारिग हो जा।
मतलब इल्हाम ये पैदा होता है कि मतलब हम अगर इस पर इंसिस्ट करते हैं मतलब, और इसको प्रूव भी करते हैं वेस्टर्न पैराडाइम के अंदर के लिए लिबरलिज्म ने फ्रीडम का दावा किया, लेकिन फ्रीडम हेल्थी नहीं है, इल्यूजन ऑफ फ्रीडम क्रिएट होता है, लेकिन एक्चुअली जो है आप और अंडर द चेंज ये चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर हम जो इसका मतलब इंडक्शन के तहत जो कंक्लूजन होगा वो तो ये होगा कि अगर लिबरलिज्म ना हो तो ज़्यादा हम फ्री होंगे, तो अल्टीमेट तो फ्रीडम का ही डिस्कोर्स
नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो ये कि हमने जो डिस्कोर्स शुरू किया है वो कन्फॉर्मिस्ट रेडिकलिज्म का इसीलिए शुरू किया है, और इस पर जो जवान लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि जिसे तुम कन्फॉर्मिटी समझते हो वो तो रेडिकलिज्म है, और जिसे तुम रेडिकलिज्म कहते हो वो कन्फॉर्मिटी है। तो तुम अपने ऊपर तो नज़र डाल लो, अपनी हालत तो देख लो, और जिस चीज़ को तुम अफर्म कर रहे हो उसकी तुमने कौन सी कॉन्ट्रडिक्शंस देख ली हैं जो तुमने फैसला। हमारे एक स्टूडेंट थे 17 साल की उम्र थी उनकी, और उन्होंने 2 बार ख़ुदकुशियाँ की, तो दूसरी बार उन्होंने ख़ुदकुशी की अटैम्प्ट की तो हम लोग उनके पास गए उनसे मिलने के लिए, तो वो हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने पूछा भाई ये क्यों ख़ुदकुशी तुमने की कोशिश, तो उसने कहा ज़िंदगी में कोई मायने ही नहीं है, ज़िंदगी में मायने नहीं है, इनके ज़िंदगी के मायने उसको पता भी चल गए 17 साल की उम्र में, और ज़िंदगी के में बेमानवियत पे उसे यकीन भी आ गया अपने इल्म, और मैंने सब पढ़ लिया। तो हमारे उस्ताद जो थे खासे पढ़े लिखे थे और काफ़ी सीनियर आदमी थे, उन्होंने कहा मियाँ 17 साल की उम्र में तुमने सब कुछ पढ़ लिया, तो ये तुम्हारे ख्याल का धोखा है, नज़र का धोखा है कि तुमने सब चीज़ें पढ़ ली। 2 किताबें पढ़ने के बाद तुम्हारा ये हाल है कि तुम्हें ज़िंदगी, और तुमने नीचे ज़रा सा पढ़ लिया तो तुम्हारी ये हशर हो गई। नीचे हाँ नीचे पढ़ लिया, नीचे ने तो ख़ुदकुशी नहीं की भाई, तो तुम्हें बता दूँ नीचे ने ख़ुदकुशी नहीं की, और नीचे ने कहा कि अपने ऊपर जो वो करता है रहम खाता है वो तो स्लेव है, स्लेव मोरालिटी है, अपने ऊपर रहम खाना वो तो कहता मास्टर मोरालिटी। उन्होंने नीचे की 3-4 रीडिंग्स उनको बताई, उसके बाद फिर वो आ गए और उनके अंदर एक एग्रेशन सा आ गया, तो वो 1 साल वो फिर पढ़े, उसके बाद फिर इवेंचुअली उन्होंने ख़ुदकुशी कर ही ली और मरी, कामयाब ख़ुदकुशी उन्होंने की और इवेंचुअली वो मर गए। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने ख़ुदकुशी की, कुछ लोग कहते हैं उनको किसी ने मार डाला उन्होंने, क्योंकि वो कोई चैनल चला रहे थे ये वो, उनको किसी ने उठा के ऊपर से नीचे फेंक दिया कि ये लगे कि ख़ुदकुशी कर। तो बताने का मतलब ये कि 17 साल की उम्र में उनका ये ख्याल था कि वो बहुत बड़े आलिम हैं, 17 साल की उम्र में उनका ये ख्याल था कि उनको कोई कन्विंस नहीं कर सका, 17 साल की उम्र में उनका ये ख्याल था कि मुझे ये हकीकत पता चल गई कि हकीकत में मानवियत नहीं है लिहाजा ज़िंदा रहने का फ़ायदा नहीं है। इससे ये इम्प्लाई होता है कि आप एक इंतहाई जाहिल माशरे में रह रहे हैं जिसके अंदर बहुत जल्दी आदमी के अंदर ये इल्यूजन पैदा हो जाता है कि मैं आलिम हूँ, और चूंकि वो अपने से ज़्यादा बेहतर इंसानों के साथ अपने से मॉरली और अपने से ज़्यादा स्पिरिचुअली या अपने से ज़्यादा कल्चरली सुपीरियर इंसानों को देखने के बजाय सिर्फ इल्म के पैमानों पर उन्हें जांचता है, और इल्म का भी एक ख़ास मखसूस तसव्वुर उसके पास होता है जिसकी रोशनी में वो ये फैसला कर देता है कि मेरे पास सब कुछ है और दूसरे पास किसी कुछ नहीं है। तो ये भी एक सिस्टमेटिक क्रिएशन ऑफ इल्यूजन है जिसकी बुनियाद पर वो ये फैसला कर लेता है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कन्फॉर्मिस्ट रेडिकलिज्म जो है उसकी जहदें जो हैं वो क्या क्या हैं, और हम इसमें जो पहला आदमी पढ़ेंगे वो विलियम पेन को पढ़ेंगे, जिसने बरतानिया में 16वीं सदी के अंदर एक जिद्दोजहद शुरू की इंडिविजुअल फ्रीडम की, और उसके बाद अंग्रेज़ जो थे उसको कई बार पकड़ के बंद किया लोगों ने, और जब अंग्रेज़ जो है परेशान हो गए उससे, और क्योंकि उसके फॉलोअर्स बढ़ गए थे, और उसका ये कहना था कि इंसानों के हुकूक अदा नहीं किए जा रहे और इंसान आज़ाद नहीं बल्कि वो ग़ुलाम है और पाबंद सलासल है, तो उसको अंग्रेज़ों ने फिर उसके बाप, चूँकि वो एक बड़ा आदमी था, उसके उन्होंने बाप के मरने के बाद जो तरके में उसको बहुत सारा पैसा मिला उसके एवज़ उसने अमेरिका में एक ज़मीन उसको दे दी गई पेन को, विलियम पेन को, जिसने वो ज़मीन बाद में पेंसिल्वेनिया कहलाई, द वुड ऑफ पेन। पेंसिल्वेनिया का मतलब है द वुड्स ऑफ पेन। तो पेन जो था विलियम पेन, उसने पेंसिल्वेनिया डेवलप किया। पेंसिल्वेनिया क्या, यानी कि जो अमेरिका के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसका जो पहला बड़ा अमेरिका की सरजमीन पर आदमी है जो बजाते खुद वहाँ पे गया, उसने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया एक लिबरल माशरा, उसको बहुत वैल्यू किया जाता है विलियम पेन को अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर। हमारे यहाँ फलसफे के अंदर उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो फलसफी नहीं है, स्टेट्समैन है, लेकिन हमारे यहाँ उसको इग्नोर किया गया। लेकिन विलियम पेन को अब मैंने चीज़ें पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब हम जो हमारा इस वक्त एनालिसिस है वो कल्चरल और एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस है कि भाई ये जो फ्रीडम की जो पर ईमान रासिख होता है वो फलसफे से नहीं होता, बल्कि एक ख़ास किस्म की एंथ्रोपोलॉजिकल और पॉलिटिकल और सोशल या हिस्टोरिकल पर्टिकुलैरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से लोगों का ईमान उसकी पर रासिख होने लगता है। तो हमें ये देखना है कि उसके अंदर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाकई सब्सटेंटिवली कंट्रीब्यूट किया। एक आदमी हम देखेंगे पेन को, जैसे पेंसिल्वेनिया का एक्सपेरिमेंट हमारे सामने जो उसने बाद में कंस्ट्रक्ट किया, तकरीबन 30 साल उसने उसको ग्रो किया, और उसने जो नॉमनक्लेचर बनाया था अमेरिकन रियासत ने बाद में बिल्कुल वैसा ही फॉलो किया जैसे हम, मेरा बजाते खुद ये ख्याल था पेन को पढ़ने से पहले कि यानी कि अंग्रेज़ों के, यानी कि मेरा एक थीसिस ये था कि मोनार्किकल ब्यूरोक्रेसी के रिएक्शन में जो है वो डेवलप होने वाला जो तसव्वुर था वो फेडरलिज्म था जो अमेरिकन फेडरलिस्ट पेपर में इस्टेब्लिश हुआ, और उसमें कोई थियोरी नहीं बल्कि वो प्रैक्टिस के नतीजे में इमर्ज हुआ है। तो बाद में मुझे पता चला कि नहीं, विलियम पेन ने तो वो थियोरेटिकल बेसिस लिख दी थी और उसके ऊपर उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग थी 17वीं सदी के अंदर बरतानिया के अंदर, और उसके जो फॉलोअर्स थे उनको क्वैक्स कहा जाता था, और फिर वो अपने सारे फॉलोअर्स के साथ अमरीका आ गया था और उन्होंने ख़ास किस्म की वैल्यू कंस्ट्रक्ट की थी जो बाद में उसको लोगों ने लेकर टेक ओवर किया और उसको फैलाया, और वो नर्च उनके आइडियाज़ जो है वो परवान चढ़े। तो इससे दो चीज़ें हमें मिलती हैं कि आइडियाज़ अगर परवान चढ़ने के पीछे ख़ास किस्म का निज़ाम और एक ख़ास किस्म का इदारती संबंधी डाल दी जाए ना तो उसके असरात होते हैं। तो अगर आया इस्लाम की जद्दोजहद के लिए भी सही बुनियादों के ऊपर कुछ इदारे पैदा हो जाएं और कुछ सही बुनियादों पर आप एक प्रैक्टिस जारी कर दें
तो उसके नतायज 100, 200, 300 साल बाद पैदा होते हैं, जैसे विलियम टेन की कोशिशों के नतीजे में 1776 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसकी मोस्ट ऑफ द क्लॉजेस हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लिकेटेड बाय विलियम टेन। ये बिल्कुल मुमकिन है कि ऐसा हो, ये बिल्कुल, हम तो ये उसूली तौर पे नहीं कह सकते कि क्या हमेशा फ्रीडम फ्रॉम होता है या फ्रीडम टू होता है, लेकिन मेरा मेरा जो अपना ख्याल ये कि कम से कम पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम टू है, और वो ये कहते हैं कि इस मकसद को हासिल करने के नतीजे में इस्लाम से फारिग नहीं हुआ मैं, बल्कि असल इस्लाम यही है। आम तौर पे लोग ये कह रहे हैं कि असल इस्लाम यही है, मतलब ये कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो सोशल इंस्टीट्यूशन है और जो इवन मार्केट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर जो लोग शिरकत कर रहे हैं वो फ्रीडम फ्रॉम की बुनियाद पे पाकिस्तान में कम से कम नहीं, बल्कि वो फ्रीडम टू की बुनियाद पर है कि भाई हमें तो ये हदफ चाहिए, और इस हदफ को हासिल करने में और अहदाफ़ रज़ाए इलाही में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये मज़हबी लोग हैं या मौलवी हैं जिन्होंने हमें बेवकूफ़ और गुमराह किया हुआ, और ये अहदाफ म्यूचुअली कंपैटिबल है।
कहाँ किया, मतलब मज़हबी यानी जो पाकिस्तान के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ है, मतलब बल्कि आलम इस्लाम में जो गुज़िश्ता 100 साल के अंदर जो जो है रिलीजियस लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है वो तो इसी
कंफॉर्मिस्ट है,
फ्रीडम टू को इंडोर्स करता है।
बिल्कुल सही बात,
फिर तो वो तो बिल्कुल कहते हैं तरक्की होनी चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं जो कहता है तरक्की नहीं होनी चाहिए, तो ये कहना कि जी ये मजहबी लोग हमें रोक रहे हैं, मजहबी लोग तो ज़्यादा उकसाते हैं तरक्की के लिए, और मजहबी लोगों के अंदर ज़्यादा जो मतलब एंगजाइटी होती है तरक्की के बारे में, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, यूनिवर्सिटी के लोग इतने नहीं होते जितने कि मजहबी इदारों के लोग होते हैं कि ये होनी चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़ है,
मॉन्यूमेंट सुनते हैं बड़े बड़े।
ये जो नजरिया ये आपका ख्याल में ये कितना पुराना है, हम इसको ज़्यादा मशहूर जो है पिछले 20 सालों में, फिर उसको 10-20 सालों में देखते हैं, आप आपका क्या ख्याल है कि लिटरेचर में सिर्फ पहले से ही आपको नज़र आता है
क्या जी,
ये जो फ्रीडम टू की बात अभी आपने कही कि मजहबी लोग भी कोई ऐसा तो नहीं है जो तरक्की की मुखालफत पे बात करता हो,
आज़ादी की तहरीकें तो सारी चली हैं, वो तो फ्रीडम टू के लिए चली, मतलब वो तो फिनोमेना ऑलरेडी इस्टेब्लिश है।
बिल्कुल सही बात,
और जो किन इलाकों में आज़ादी की तहरीकें नहीं चली तो उनकी हमदर्दियाँ उन तहरीकों के साथ थी, वो तो नेचुरली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है, मतलब
बिल्कुल सही बात।
उसके बाद जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है, मतलब जैसे अभी मौलाना मौदूदी की हमने दोबारा रीडिंग की है, मतलब वो तो बिल्कुल मॉडर्न इंडोर्स करते हैं हर चीज़ को, कुछ जो जो उन्होंने अपनी तजदीदों में लगाई है, दीन में जो मेहंदी का तसव्वुर पेश किया है वो आप पढ़ लें,
बिल्कुल
यह है आप क्या समझते हैं कि वो ऐसा होगा मुल्ला की तरह होगा, वो सूट टाई पहनेगा, वो यूं ये मेहंदी होगा, ये मतलब मौलाना मौदूदी जैसा आदमी दिख रहा है, और अल फुरकान जो मौलाना मंजूर अहमद नोमानी का पर्चा है उसमें छप रहा है उस जमाने में 100 साल पहले, तो क्या है ये मतलब, तो मतलब ये जो फ्रीडम की जो डिस्कोर्स अगर हुआ है तो ये तो बिल्कुल हमारे यहाँ तो नेशनल इस्लामिक पर्सपेक्टिव में डेवलप हुआ है, मतलब थ्रू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड थ्रू रिलीजियस पर्सनैलिटीज, इसमें तो कोई आवाम का तो कसूर सिरे से है ही नहीं, मतलब
जानना चाहिए
वो तो कहते हैं कि अगर तुम्हें तरक्की करनी है तो नेकर पहनो और हैट पहनो, इससे तरक्की होती है, वो किस हद तक खेला गया, वो कहते हैं अगर मैं इख्तियार में आया तो मैं उलमा की गाड़ियाँ मूँ दूँगा सारे उलमा की, मैं ये क्यों सीख कराया था, मतलब यानी रूस जाकर ये सीख कराया, रूसियों की हिम्मत नहीं हुई दाढ़ी मुंडने की।
और जब उस वक्त के वाइसराय ने कहा कि मेरी बेगम आपकी बेगम से मिलना चाहते, कहते हमारी बेगम हमारी औरतों का गैर मुस्लिम औरतों से भी पर्दा है और उनको मिलने नहीं दिया,
हमारी औरतें आप जैसी औरतों से पर्दा करते नहीं मिल लेते भगा दिया।
पहली
बात तो ये कि ये जो अगर कोई आदमी कहे कि भाई आहियाए इस्लाम की तहरीकें यानी कि इस्लामिक रिजर्जेंस है, यानी कि मगरब को ये ख़तरा है कि भाई इस्लामिक रिजर्जेंस है और यानी कि विजिबल है, विजिबल इस्लामिक रिजर्जेंस है, ख़ास तौर पे ईरान के कामयाब इनकलाब के बाद से ये डिस्कोर्स पैदा हो गया मुसलमानों के अंदर 79 से लेकर फिर अल्जीरिया के अंदर और मतलब इंडोनेशिया में, और लेकिन चलो वो सुहार्तो जो था वो इतना रिलीजियस नहीं था जितने खुमैनी या उलमा थे ईरान के, और इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे वो, नेशनलिस्ट थी ये, नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं थी ईरान की, मूवमेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं थी बल्कि वो रिलीजियस मूवमेंट थी। तो 79 ऑनवर्ड और फिर आप देखें पूरी दुनिया के अंदर, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो रिजर्जेंस का जो मामला था ये 1989 ऑनवर्ड रोल बैक होना शुरू हुआ है। तो जो आप कहते हैं कि बुनियादी तौर पर रिजर्जेंस है, इस्लामिक रिजर्जेंस है, वो एक्सेलरेटिंग नहीं बल्कि डी एक्सेलरेटिंग है, यानी कि लेकिन जो डी एक्सेलरेशन हुआ है वो भी किसी न किसी तौर पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो बुनियादी तौर पर वो आगे नहीं जा रहा बल्कि वो पीछे जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि सोसाइटी के जो रिलीजियस इदारे थे या इंस्टीट्यूशंस थे, उन इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद पर जो आपने माइंड डेवलप किया था, वो माइंड बुनियादी तौर पर वेस्टर्न वैल्यूज़ को ऑर्गेनिकली रिकनसाइलेबल समझता है इस्लामिक आहिया से। ऐसा नहीं है कि वो कोई प्यूरिटैनिकल कस्म का मजहबी तस्वर मौजूद हो, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल प्योरिटैनिकल है। जी शाकिर, मुझे याद है, मुझे याद है। ठीक है, लेकिन ये कि जो पाकिस्तान वगैरह के अंदर हो रहा है, दुनिया में पाकिस्तान में ये जो रिजर्जेंस हो रही है रिलीजन्स की तरफ, अगर फ़र्ज किया कि हम उसे देखें तो उसमें ख़ास उनका प्रोटेस्टेंट एलिमेंट भी है, प्रोटेस्टेंटाइजेशन भी है, ख़ास प्रोटेस्ट भी है अगेंस्ट उलमा, प्रोटेस्टेंट है, प्रोटेस्टेंटाइजेशन है उसके अंदर, यानी कि आप देखें कि मजहबी लोगों के हाथों जो मजहबी लोग मरे हैं वो इतने ज़्यादा कभी नहीं मरे पाकिस्तान के अंदर, मजहबी लोगों का मजहबी लोगों पे इतना गुस्सा कभी नहीं रहा जितना पिछले 89 ऑनवर्ड रहा है। तो अगर फ़र्ज़ किया कि आप कहें कि इस रिजर्जेंस है, इस्लामिक रिजर्जेंस है, तो वो ट्रेडिशनल इस्लामिक रिजर्जेंस नहीं है बल्कि इसमें कोई नया एलिमेंट है, इसमें एक ख़ास किस्म का रिएक्शन भी है। यानी कि आप देखें कि पाकिस्तान में कितने सारे उलमा शहीद हुए हैं, शिया उलमा भी शहीद हुए हैं, सुन्नी उलमा भी शहीद हुए हैं, देवबंदी भी हुए हैं, बरेलवी भी हुए हैं, अहले हदीस भी हुए हैं अपना। अब आप इसका एक सिंपल थियोरी है कि भाई अमेरिकन मरवा रहे हैं, सिंपल
कि भाई अमेरिकन का इंटरेस्ट ये है कि मुसलमान मारे जाए, उलमा से महरूम हो जाए लोग, चाहे वो शिया उलमा हो, सुन्नी उलमा हो, देवबंदी हो, उन सबको मारा जाए और ये मुसलमान आपस में लड़ें। ये एक ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है, सारा काम अमेरिका कर रहा है। लेकिन एक दूसरी भी जस्टिफिकेशन है, दूसरी जस्टिफिकेशन जो कि हमें मिलती है क्या कहते हैं यूरोपियन एक्सपीरियंस। देखें, जब भी दुनिया में कहीं पर रिलीजन के नाम पर रेफर्मेशन हो, लेकिन रेफर्मेशन का जो 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 ख्याल हो या आइडियाज़ हो, वो ट्रेडिशनल इस्लामिक वैल्यूज़ के ऊपर ना खड़े हुए हों, बल्कि कुछ नए ख्यालात के ऊपर खड़े हुए हों, तो उनमें जो पहली लड़ाई होती है वो अंदर की लड़ाई होती है। जैसे कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में, और प्यूरिटन्स और कैथलिक्स के अंदर, या मॉर्मन्स में और प्रोटेस्टेंट्स में, या एवेंजिकल और कैथलिक्स के बीच में अंदर की लड़ाई है। तो आप जो जो चीज़ देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, एक तो उसका सिंपल ये है कि भाई हम लोग तो बिल्कुल शरीफ हैं, हम लोग बिल्कुल एक दूसरे को नहीं मारते, बाहर से कोई आदमी आके मार के चला जाता है और हम लोग सिर्फ लाश उठाते हैं। ये एक बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है, उसमें कुछ लोग होंगे जो कि सीरियसली उलमा से नाराज़ हैं, वो मार डालते हैं जाके उलमा, सीरियसली वो एक दूसरे के जो ट्रेडिशनल फाउंडेशंस हैं उन पर अटैक करते हैं। तो उसके अंदर एक ख़ास किस्म की नाराज़गी है कि ये जो लोग हैं ये इस काबिल नहीं थे कि ये अपने सामने उठने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करते। अब मैं आ गया हूँ, मैं मुकाबला करूँगा इसमें। ये बहुत ख़तरनाक है अगर ऐसा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर एक थियोरी हम लें कि ऐसा ही है कि भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हमारे रिवायती मजहबी तनाजुर था वो मगरिब का मुकाबला नहीं कर सका, लिहाजा हम अब मज़हब की एक ऐसी तफसीर पेश करते हैं जो आज के चैलेंज को मीट करें। इसका काम आपके जो बड़े बड़े लोगों ने भी किया है, जैसे अल्लामा इकबाल की आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के अंदर कॉम्प्रीहेंसिव एक्नॉलेजमेंट है इस आइडिए की। वो कहते हैं रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी पूरी की पूरी थॉट, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा मेटाफिजिक्स को भी, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा सोर्स ऑफ द लॉ को भी, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन को भी। तीनों चीज़ों को, मेटाफिजिक्स रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, एपिस्टेमोलॉजी रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, सोर्सेज ऑफ द लॉ भी रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ये प्रोटेस्टेंटिज्म है भाई। इसका मतलब ये है कि हम जिस इल्मियत के ऊपर खड़े हुए थे वो इल्मी फाउंडेशन है ही गलत, जिस मादादु तबियात पे खड़े वो भी गलत, और जिस माखज़े कानून पे खड़े हुए वो भी गलत। अब वो तीनों ही अगर गलत हैं तो फिर हमारे उलमा क्या कर रहे थे? फर्ज कर लेते हैं कि एक साइकी पैदा हो जाए इस तरह की, जो ये कन्वेंस हो जाए कि भाई ये तो सब निकम्मे और नालायक लोग थे। लेकिन आज अगर उन्हीं की बात को कोई आदमी आगे बढ़ाए तो समझेंगे कि भाई ये तो आदमी जो है हमें जहालत के अंधेरों में ढकेलने चाह रहे हैं। तो उसकी तरफ मुख्तलिफ रवैये हो सकते हैं। एक रवैया ये हो सकता है कि भाई इनकी बात नहीं सुनो, एक रवैया ये हो सकता है कि इनको जाहिल मौलवी का नाम दे दो, एक ये हो सकता है मार डालो इनको, ये भी तो हो सकता है कि मार ही डालो। तो मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली यूरोपियन इंटरवेंशन होगी। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो तुम कह रहे हो रिजर्जेंस, इस वक्त सबसे आसानी से बिकने वाली प्रोडक्ट, देर इज नॉट ओनली अ वॉर ऑफ नैरेटिव इज गोइंग ऑन, देर इज अ कमोडिफिकेशन ऑफ नैरेटिव इज ऑल्सो गोइंग ऑन। इट्स नॉट जस्ट द वॉर ऑफ द नैरेटिव, इट्स ऑल्सो द कमोडिफिकेशन ऑफ नैरेटिव इज गोइंग ऑन। तो अब मतलब इस्लाम के नाम पे कुछ भी बोलो बिक जाता है। अचानक तुम सुअर की तरह फूल जाता आदमी खा के, हर तरफ से पैसा बरसने लगता है। तो भाई मैं बताऊं कि अगर कोई चीज बिक रही हो तो उसमें तनाव आ जाती है। अगर पराठे बिकने लगे तो कई तरह के पराठे आ जाएंगे, लोगों को पता चलता है ना पराठे खाना अच्छी बात होती है, तो कई तरह के पराठे आ जाएंगे, चपटे पराठे, लाल आटे के पराठे, इसके पराठे, उसके पराठे, इसके। जब बहुत ज़्यादा पराठे आ जाएंगे तो पराठा लोगों को याद रहेगा, लेकिन मुख्तर तनवो पराठों की आपको असल पराठा भुला देगी। जब आप वो पिज्ज़ा बेचना आपका मकसद हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि पिज्जा की रेसिपी क्या होगी, कुछ भी बना दो। वो क्या अच्छा ये टिक्का खाते हैं, टिक्के टिक्का पिज्जा बना, ये पिज्जा बना, वो पिज्जा बना, मिर्चें ज़्यादा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जो लोगों की डिमांड है वो कर दो। तो जो लोगों की डिमांड है वैसा इस्लाम पेश हो जाता है। तो रिजर्जेंस ऑफ इस्लाम तो नहीं है। मसलन आप मुझे बताएं कि मुसलमानों के अंदर क्या चैरिटी के नाम के ऊपर अय्याशी का सामान बांटा गया है? पूरी मुसलमानों की तारीख में बता दें आप। हजरत उमर के ज़माने में कोई आदमी आया और कहे कि मुझे वो दो चैरिटी दो, तो वो देगा तो बेसिक नीड को ना, फर्ज क्या बेसिक नीड, तो उसके बाद है फिर भी वो आ जाए चैरिटी मांगने, तो जूते मार के भगाएंगे ना, नहीं तो ये शर्म नहीं आ रही, पेट तेरा भरा हुआ है तू फिर भी भीख मांगने आ गया। चैरिटी उसको मिलेगी भाई, चैरिटी के नाम पे आप मारिया बी के 8,000 रुपये का सूट दोगे है भाई, और बीबीसी और सीएनएन को ये बताओगे कि मैं चैरिटी दे रहा हूँ, और वो बेगैरत के बच्चे चैरिटी लेने आ गए टीवी के सामने। चैरिटी के नाम पे कभी किसी ने बच्चा बांटे हैं? सवाल के जवाब में बच्चा दे दिया है किसी ने कि भाई आप सही सवाल के जवाब में आपको बच्चा दूंगा मैं, और वो जो बच्चा ले के आया था वो उसके बाप का बच्चा था, वो कैसे उसने लाके उसको बेचा, कैसे लाके उसने दिया? मजहबी आदमी है ना भाई, वो है मजहबी आदमी है ना, मजहबी लोग देते हैं ना उसको फंड सबसे ज्यादा। तो वो ये जो कर रहा है तमाशा, ये इस्लाम ही के नाम पर हो रहा है ना सब। तो जो रिजर्जेंस के नाम पर हो रहा है दुनिया में उनमें मुख्तलिफ, तो जब बहुत सारी चीज़ें बिक रही होती हैं तो उसमें फिर कैटेगराइजेशन होती है। वो कहते हैं ये जो बाज़ार में पिज्ज़ा बिक रहा है ये हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक नहीं बन रहा, ये गंदा पिज्ज़ा है। अच्छा पिज्ज़ा और गंदा पिज्ज़ा और सेहत के ज़र्री उसूलों के मुताबिक बनने वाला, इसी तरह इस्लाम के बारे में भी। तो असल में कौन सा पिज्ज़ा बिकेगा? वो पिज्ज़ा बिकेगा जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो। पिज्ज़ा हट का पिज्ज़ा सबसे ज़्यादा चलेगा, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सली एक्नॉलेज है। इसी तरह इस्लाम भी वो चलेगा जो यूनिवर्सली एक्नॉलेज है, समझे? जैसे अभी मैं बता रहा था, लेकिन इसे मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा कि इस्लाम के अंदर आप सेक्युलर से लेकर मजहबी लोगों तक देख लें, पूरे रमज़ान में मैं प्रोग्राम्स देखता रहा हूँ, जो रिप्रेजेंटेटिव शख्सियत है इस्लामी शख्सियत, वो रेडिकल शख्सियत को बना के पेश किया जाता है। जो कन्फॉर्मिस्ट शख्सियत है इस्लाम के अंदर, उसे इस्लामी तारीख की रिप्रेजेंटेटिव शख्सियत नहीं। जैसे पाकिस्तान में मजहबी लोगों की हलक नहीं सूखता ये बकवास करते करते उस बुढ़िया के बारे में जिसने हज़रत उमर का गिरेबान पकड़ लिया था। भाई हज़रत उमर का गिरेबान पकड़ने वाली इस्लामी माशरे की रिप्रेजेंटेटिव शख्सियत नहीं थी, वो एक जाहिल बुढ़िया थी भाई, वो थोड़ी थी इस्लामी माशरे की रिप्रेजेंटेटिव शख्सियत। जो खलीफातुल मुस्लिमीन के जाके गिरेबान पकड़ ले एक कपड़े के साइज के ऊपर, वो है माशरे की रिप्रेजेंटेटिव शख्सियत। या खालिद बिन वलीद है माशरे की रिप्रेजेंटेटिव शख्सियत, जो 2,00,000 की फौज लेके खड़ा हुआ है और उसको खलीफा, जिसके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं, कुछ नहीं है उसके पास, फटे हुए कुर्ते और फटी हुई चप्पलों के साथ वो कह रहा है वापस आ जाओ, ग्राउंड कर रहा हूँ तुम्हें वापस, और वो पूरी फौज को वहीं छोड़ के वापस आ जाए घोड़े पे बैठ के। हजरत उमर से खालिद बिन वलीद ने वो क्यों नहीं किया भाई, क्रिटिकल क्यों नहीं हुआ खालिद बिन वलीद? خالد بن ولید کریٹیکل ہوتا اور حضرت عمر سے کہتا آپ بتائیں آپ نے کتنی جنگیں لڑی ہیں, کتنی جنگوں کو آپ نے کمانڈ کیا, کتنی جنگوں میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے, بتائیں آپ مجھے, جواب دیں. مسجد میں کھڑے ہوئے بولا خالد بن ولید نے کبھی؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سیف اللہ. آپ کو کہا ہے سیف اللہ؟ نہیں کہا آپ نے. اور میں نے رومنس کو مارا ہے, پرشینس کو مارا ہے, بیبلونینس کو مارا ہے, کون ہے میرے مقابلے پہ؟ پورے سینٹرل ایفریقہ ہے کوئی دنیا میں جو میرے مقابلے پہ کھڑا ہو؟ اور امت کا فائدہ کس میں ہے؟ امت کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ خالد بن ولید کے, کیونکہ اللہ کی تلوار کے سائے میں رہے. بولا یہ خالد بن ولید چپ کر کے آ گئے اور تلوار لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حضرت ابوبکر عمر کے قدموں میں رکھ دی. اور جب نماز پڑھنے جاتے تھے تو ایک آدمی روز بہکاتا تھا, خالد کو بھڑکاتا تھا کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, عمر آپ سے جلتا ہے, عمر آپ کو یہ کہتا ہے. چپ کر کے جا کے بیٹھ جائے نماز پڑھتے ہیں, حضرت عمر کے پیچھے ہی نماز پڑھتے تھے. یہ نہیں کہ چھرا بھوک دیا حضرت عمر کے آگے اور بغاوت کر دی. اور ایک دن حضرت عمر جا رہے تھے, وہ سمجھا کہ یہ خالد بن ولید ہے اور حضرت عمر کے پیچھے چلتا رہا اور کہتا رہا عمر تمہارے خلاف ہے, عمر تمہارے خلاف ہے, اور میں بھڑکا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے, تو آج دشمن ہے اور یہ. اور حضرت عمر چپ کر کے چلتے رہے, دونوں کا قد کاٹ ایک جیسا ہی تھا, وہ دھوکہ کھا گیا. تو جب حضرت عمر اندر گئے تو خالد بن ولید پہلے سے بیٹھے تھے. حضرت عمر نے خالد بن ولید سے کہا کہ خالد آج جو ہے جو تمہیں بھڑکاتا تھا نا, وہ تم پہلے ہی اٹھ کے آ گئے, کیا تہجد یہیں پڑھا ہے تم نے؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں کیا کہہ سکتا ہوں, جو آپ کا حکم. آپ کو خالد نظر نہیں آتا, آپ کو بڑھیا نظر آتی. ارے وہ جاہل بڑھیا تھی بھائی, کون سی شرافت کا کام کیا اس نے جو ایک آدمی جو کہ سابقون اولون ہے, عشرہ مبشرہ میں ہے, اتنا بڑا ہے جس کی زبان پہ حق ہوتا ہے, اس کا گریبان پکڑا کیسے اس نے؟ شرم نہیں آئی اس کو؟ اس نے خلیفہ کے اوپر انگلی کیوں اٹھائی؟ ہمارے مسلمانوں کو مرے جاتے رہتے ہیں, اس کو بتاتے رہتے ہیں وہ بڑھیا نہیں, کیا سب بڑھیا بن گئے, سب پورا معاشرہ وہ جاہل بڑھیا بنا ہوا ہے. ابا بھائی مسلمانوں کے معاشرے کی ریپریزنٹیٹیو شخصیت حضرت علی تھے, عمر تھے, عبداللہ بن زبیر تھے, زبیر تھے. زبیر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ زبیر کو دیکھ کے شیر کا خیال آتا تھا ذہن میں, لیکن اف کبھی نہیں کی, نو نہیں کیا کبھی کسی بات کو. اور ماں نے کہا کہ اگر تو نے کھانا, اگر تو نے ایمان نہیں چھوڑا تو تجھے کھانا, میں کھانا نہیں کھاؤں گی. تو انہوں نے کہا کہ اگر 100 بار بھی آپ کی جان نکل گئی نا, 100 بار بھوکے رہ کے, تب بھی ایمان نہیں چھوڑوں گا. 100 بار بھی اگر آپ مر گئی تو میں ایمان نہیں چھوڑوں گا. تو اب آپ کو ہمارے یہاں سب لوگوں کو بڑھیا نظر آتی رہتی, بڑھیا نے یہ کر دیا, بڑھیا نے یہ پڑھ دیا, بڑھیا نے یہ کر دیا. ابھی سب بڑھیا بنو گے کیا؟ بن جاؤ پھر سب لوگ بڑھیا. تو تم عمر کے اوپر اٹیک کرو گے تو تم پیغمبر پہ بھی اٹیک کرو گے. نہیں, آپ مصر کے اندر, ایجپٹ, سیریا کے اندر, سیریا کے اندر کہہ رہا ہوں, ایجپٹ کے اندر کھڑے ہو گئے لوگ, مسلمان ہیں وہ, کیا کہتے ہیں, تردد, تمرد جو ہے کھڑی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیشسٹ کہتے ہیں, کھلے عام پبلکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اعتراض. بڑھیا کو جو فالو کرے گا وہ یہ بنے گا, خالد کو فالو کرے گا تو کچھ اور بنے گا. تو جو کنفارمزم ہے وہ کریٹیکل اگر آپ ہو تو ہر چیز کے بارے میں ہو جاؤ نا بھائی, پھر کریٹیکل کریٹیکل ایک چیز کے بارے میں کیسے ہو گیا؟ اس چیز کے بعد حضرت علی جب سفر کرتے, یعنی کہ بازار میں ان کو پتہ چلا کہ لوگ جو ہے تو ناپ تول میں وہ کر رہے ہیں, بدماشی کر رہے ہیں, تو درہ ہاتھ میں لے کے حضرت علی گھومتے تھے, خلیفہ تھے, کہ اگر کسی کو میں نے دیکھ لیا تو ماروں گا وہیں پر. لیکن کبھی مارا نہیں انہوں نے, کبھی نہیں مارا, صرف درہ ہاتھ میں لے کے پھرتے تھے. तो जब थोड़े दिन तक उन्होंने फिर रहा तो इतने बदमाश थे लोग कि उनको समझ में आ गया हजरत अली मारेंगे नहीं, तो पीछे से कंकरियां मारते थे हजरत अली। तो हजरत अली ने कहा मैं तुम लोगों को सीधा करना जानता हूँ, लेकिन अपने आप को बिगाड़ के तुम्हें ठीक नहीं करूँगा। मसला नहीं था उनके लिए लोगों की गर्दनें मार देना। तो बताने का मतलब ये कि अगर जो लोग हजरत अली के पीछे कंकरियां मार रहे हैं उनको तुम कहो कि देखो हाकिम वक्त के सामने क्या माशरा था, कंकरियां मार, हाकिम वक्त खुतबा दे रहा खड़ों का बदतमीजी करते थे हाकिम वक्त के सामने, तो हाकिम वक्त बात करता था। तो आइडियल आपके लिए हाकिम वक्त होना चाहिए या वो बदतमीज लोग होने चाहिए जो जुमे की नमाज में खुतबा नहीं पढ़ने दे रहे? नहीं तो आप हजरत अली जैसा बनना चाहोगे या आप वो बदतमीज बनना चाहोगे जो हजरत अली के साथ बदतमीजी कर रहे थे? आप फैसला करो भाई। तो बताने का मतलब ये कि मुसलमानों की तारीख के अंदर कभी भी बुढ़िया आइडियल नहीं रही। मुसलमानों की तारीख में उमर अली आइडियल रहे जो जिनके अंदर ग्रेस था, जो बात सुनते थे, जो बात अगर डिसएग्री भी करते थे तो वो डिसएग्री करने के बाद जो फाइनल डिसीजन था उसको फॉलो करते थे। उस केस के अंदर आइडियल बुढ़िया नहीं है, अब उमर है। तो बताने का मतलब ये है कि हमें अपनी तारीख के अंदर से वो चीज़ें निकाल निकाल के दिखाना जिसकी बुनियाद पे आइए पता चले कि वो कितने क्रिटिकल थे चीज़ों के बारे में, इससे ये इम्प्लाई नहीं होता वो कितने ज़्यादा सर झुका देते थे कुरान और सुन्ना की रोशनी में। ये थी आइडियल शख्सियत। अगर आप आइडियल शख्सियत ये बनाओगे क्रिटिकल, तो थोड़े दिन की बात है आपको उठा के आपकी औलाद बाहर फेंक देगी। जब आपकी औलाद पूछेगी क्या मैं आपकी औलाद हूँ भी या नहीं, सारे भाई बहन तो बड़े गोरे हैं मैं काला क्यों, जवाब दे सकते।
ये जो मतलब फेनोमेना है, मतलब जो आपने बताया रिलीजियस तफात के अंदर प्रोटेस्टेंट एटीट्यूड है, मतलब ज़ाहिर है ये भी मतलब क्योंकि आपके सामने नहीं ये नहीं है पाकिस्तान में या इधर इस्लामी ममालिक में इंडोनेशिया वगैरह में भी है, मतलब
जी
यानी ये तो मतलब बुनियादी तौर पर जो यानी नज़र आ रहा है साफ तौर पर कि मगरब अमरीका जो है, अमरीका और मगरब जो है वो तो चाह रहा है कि जो अफगानिस्तान की बार की वजह से, ज़ाहिर अफगानिस्तान की बार जो है दुनिया की पहली बार है जिसमें दुनिया की तारीख में दुनिया की सारी कौमें और सारी कुव्वतें एक तरफ हुई हैं। पूरी तारीख इंसानी में कोई ऐसी हिस्ट्री में हमें कोई ऐसी जंग नहीं मिली है कि पूरी दुनिया किसी एक दुश्मन के खिलाफ होते हैं, तो पूरी तारीख इंसानी में सबूत नहीं मिलता है। और एक बहुत ही छोटा सा दुश्मन है तालिबान जैसे करियल टाइप जो दुश्मन जो है उस पर आपने अटैक किया है, मतलब उसके हाथ तो पागल कुत्ते की तरह वो है, मतलब तो वो तो उसका जो मतलब नज़र आ रहा है ये कि मतलब ये कि इनको नहीं मार सके हम भाई, पूरी दुनिया साथी ना उसके तो मतलब अभी तक है
बिल्कुल,
तो वो तो उनको कुछ नहीं कर सके। तो अब तो वो अल्टीमेटली जो काम कर रहा है कि यानी अरब वर्ल्ड के अंदर सिविल वार और शिया सुन्नी डिफरेंस, ये तो बिल्कुल फंडेड काम है, मतलब
बिल्कुल फंडेड काम।
और ये पाकिस्तान में जो कुछ लिटरेचर हमने स्टडी की है उससे तो बिल्कुल क्लियर है कि मतलब ये तो फंडेड काम है, मतलब
नहीं। इस बात आपको पता है कि यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा जो मिल रहे हैं स्कॉलरशिप्स इस्लाम पर वो शिया सुन्नी बाइफरकेशंस के ऊपर, शिया सुन्नी बाइफरकेशन या आर्मीज, यानी कि जो पोस्ट कॉलोनियल आर्मी है उनके खिलाफ आप कुछ लिखें आपको फंड मिलेगा, या शिया सुन्नी बाइफरकेशन के ऊपर आप लिखें। मतलब आप मुझे बताएं कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या कहते हैं वॉरिक और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, उसके अंदर जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके ऊपर किस बात पे 25-25 और 30-30 लाख रुपए की स्कॉलरशिप 6 महीने की आपको मिल रही है? क्यों भाई, ये ऐसा कौन सा मसला पैदा हो गया मुसलमानों के अंदर अचानक जिसके लिए यूरोप, भाई यूरोप को क्या है, हमारा अंदर का मसला हम देखेंगे भाई। मैं जाके कैम्ब्रिज में जाके बैठ के लिखूं कि शिया सुन्नी बाइफरकेशन क्या है और उसके लिए मुझे लाखों रुपए दे रहे हैं, ऐसी पागल हो गए क्या वो? दुनिया को क्या फायदा पहुंच रहा है, इंसानियत को क्या फायदा पहुंच रहा है, हमको क्या फायदा पहुंच रहा है इससे भाई? तो ये तो बिल्कुल 100% कमोडिटी है, ये हमारी इंटेलिजेंसिया को समझ में आना चाहिए।
आज के ट्रिब्यून में एक आर्टिकल पे आया था कि ओबामा की पॉलिसी ऑन सीरिया पे, किसी बंदे ने उसको कहा कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, उसको उसने टाइटल था कॉलम का अ हेल्दी स्टेलमेट, कि आप ज्यादा रेबल्स को पावर देंगे तो रेबल्स के अंदर ज्यादा जो है वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं, जो अगर ताकत पकड़ गए तो उन्होंने अभी से जिन मोहल्लों को काबू में डाल देना वहाँ पे सख्ती करना शुरू कर दिया। और अगर आपने ज्यादा बशर अल असद को दे दिया ताकत तो यही होगा कि ईरान की हेजमनी होगी। तो आपने क्या करना है, आपने फंड्स तब तक डालने, पैसे तब तक पैसे डालने हैं रेबल्स को कि वो सीरियन गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखें, और जब सीरियन गवर्नमेंट बिल्कुल इनको कुचलने लगी तो मतलब इनको पैसे दे दें ताकि ये इनको रिटर्न कर लें, लेकिन इतने मत दें, इतने मत पैसे दें इनको कि ये सीरियन गवर्नमेंट को बिल्कुल ही गिरा दें।
दूसरे के मतलब भाई कैसे, मतलब वर्ल्ड बैंक की जो मतलब वो है जो थी साबिक जो है डायरेक्टर मतलब एमी चुआ जो, उसकी जो किताब है वर्ल्ड ऑन फायर, तो उसमें तो उसने 2003 में स्पेसिफिकली जो उसका चैप्टर है मतलब मिस्र के ऊपर और आलम अरब पर, उसने तो स्पेसिफिकली लिखा है उसके अंदर कि भाई ये जो आप डेमोक्रेसी यहाँ पर फंडेड कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है उसके हदीये में उसामा बिन लादेन भी आ सकता है, एंटी इसराइल भी आ सकते हैं, एंटी अमेरिकन भी आ सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है उसने उसके अंदर, उसके बावजूद उसने किया मतलब। तो अल्टीमेट इसका मतलब है वो ये चाह रहा है कि डेमोक्रेसी के नतीजे में आ भी जाएं तो सिविल वार की तरफ कन्वर्ट करके इनको खत्म कर दीजिए।
जहाँ पर भी देखें बादशाह के अंदर ये नहीं होता, बादशाह में जो पावर होती है ना वो मोनार्क के पास होती है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेजोरिटी कौन है और माइनॉरिटी कौन है। बादशाह कहता है जिसमें दम है आ जाए मारूंगा उसको मैं पकड़ के, चाहे वो माइनॉरिटी। डेमोक्रेसी जब आती है तो पहला प्रॉब्लम ये पैदा होता है कि मेजोरिटी का रूल चलेगा, तो मेजोरिटी जो होगी वो थ्रेट फील करेगी माइनॉरिटी से या माइनॉरिटी थ्रेट फील करेगी मेजोरिटी से। अब सवाल ये है कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी किस बुनियाद पर होगी, लैंग्वेज की बुनियाद पर होगी, जहाँ जैसे पाकिस्तान के अंदर लैंग्वेज की बुनियाद पर, एथनिक बाइफर्केशन की बुनियाद पर है, या फिक्हे की बुनियाद पर है। तो दुनिया डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर हमेशा प्रॉब्लम रहेगा होमोजेनिटी का, इसी वजह से दुनिया में जितनी बड़ी डेमोक्रेसीज रही हैं वो जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस डेवलप करती हैं तो होमोजेनाइज करती हैं सोसाइटी को। उस होमोजेनाइजेशन में रिलीजियस होमोजेनाइजेशन भी करते हैं, सेक्टेरियन भी करते हैं, एथनिक भी करते हैं, लिंग्विस्टिक भी करते हैं। शक्ल यहाँ पर भी कौन, अगर बादशाह होगा या कोई डिक्टेटर होगा उसके लिए मैटर नहीं करता माइनॉरिटी रूल कर रही है या मेजॉरिटी रूल कर रही है, क्योंकि रूल तो सब्जेक्ट कर रहा है, उसका मसला नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी में ये इल्यूजन, तो उसमें हो कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन ये होगा जो मैं भी विजन कर रहा हूँ वो ये कि इस्लामिक वर्ल्ड छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर ब्रेक कर दी जाएगी, जैसे इराक आपके सामने है, कुर्द इलाके अलग, शिया इलाके अलग, सुन्नी इलाके अलग, इस तरह पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को ब्रेक कर दिया जाएगा छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर, और जो छोटे पॉकेट्स होंगे उनकी एक इफेक्टिव वॉर मशीनरी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और वो पूरी की पूरी ग्लोबल कैपिटल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जैसे उन्होंने किया है यूरोप के अंदर भी, इस तरह ही किया है, इस तरह ही यहाँ पर भी करेंगे, तो कोई थ्रेट ना रहे।
दूसरे के मतलब जो मिस्र के अंदर जो सूरत हाल है, यानी मिस्र के अंदर तो पार्लियामेंट के अंदर 90% तो मजहबी लोग हैं, मतलब यानी 75% मतलब अफवान है और 20% जो है अन्नू सेल्फी हैं। तो अगर अगर पार्लियामेंट जो है मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मासेस है तो क्या हो रहा है फिर, ये मासेस कहाँ पर है फिर ये, मतलब तो ये समझना कि अगर पार्लियामेंट के अंदर आपको अक्सरियत हासिल हो जाती है तो लोग इस्लाम के साथ मोहब्बत जाहिर करते हैं, ये भी एक अहमखाना बात है, मतलब इलेक्शन के अंदर वोट का कंसेंसस किसी की वजह से हो सकता है, आपकी कुर्बानी की बुनियाद पर, आपको पसंद करने की बुनियाद पर, इसका मतलब ये नहीं अगर आप मासेज ने आपको वोट दिया है तो मासेज आपके पर्पस के लिए मोबिलाइज भी होंगे,
और ये कि आप जो भी करेंगे मासेज आपके साथ होंगे, ये भी जरूरी है, मासेज फौरन आपको छोड़ के अलग हो जाएंगे, मासेस, वो पूरा सिस्टम आप है ही इस तरह कि पब्लिक स्फेयर के अंदर जो फैसला हो जाए, तो पब्लिक स्फेयर आप मैनेज कर रहे हो क्या? पब्लिक स्फेयर तो इंटरनेशनल ग्लोबल कैपिटल कर रहा है, यानी कि अभी जो इजिप्ट में मैसेकर हुआ है उसकी खबर जो है इजिप्ट में जो अखबार है ना उसके आखिरी सफ़े पे, आखिरी सफ़े। अमेरिका ने पाकिस्तान में मीडिया को $50 मिलियन दिए, $50 मिलियन दिए, एक मिलियन का मतलब होता है तकरीबन 100 मिलियन, एक मिलियन का मतलब होता है 100 मिलियन, 100 रुपए का है ना भाई डॉलर, एक मिलियन का मतलब 100 मिलियन हो गया, तो 50 मिलियन का मतलब हो गया 500 मिलियन, हैं 500 मिलियन रुपए दिए। तो पाकिस्तान में कुछ आर्टिस्ट्स हैं और क्या कहते हैं वो हैं, एक दो लॉयर हैं, उन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, किस बात के पैसे, क्यों ले रहे हो तुम लोग पैसे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो है उस्मान पीरजादा है, देखो अब उस्मान पीरजादा कोई मुल्ला तो नहीं है ना भाई, लिबरल आदमी है, लेकिन उसका लेफ्ट का बैकग्राउंड लेफ्टिस्ट है, और उसकी ज़ाहिर है उसके पूरा ख़ानदान का एक बैकग्राउंड है, तो वो है उसके जो डायलेक्टिक्स है हमेशा एंटी इंपीरियलिस्ट रहा है। तो वो उसने वो था और 3-4 और लोग थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे टीवी चैनल्स के नुमाइंदे वहाँ थे, सारे टीवी चैनल्स के नुमाइंदे, उन्होंने कहा कि भाई ये सीधी सीधी रिश्वत है, आपको क्या जरूरत है ये लेने की, और आप ये किस बात पे ले रहे हो और क्या करोगे इसके पैसे का है? आप मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हो, आप प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है, कोई चैनल इस वक्त नुकसान में नहीं जा रहा, और ये वो उन्होंने इतनी तकरीर की एक घंटे की, किसी एक चैनल के अंदर वो कह रहा है उस्मान पीरजादा एक फ्रेम नहीं चला, एक फ्रेम कहते हैं, किसी अखबार में खबर नहीं लगी, किसी एक फ्रेम, तो
इसीलिए पैसे दे।
तो वो कह रहा, उसने बाद में बोल दिया कि सोशल मीडिया पे उसने बोला कि भाई, उसने खुद ही अपलोड कर दिया, उसने ये कहा कि भाई ये जो है किसी ने नहीं दिया, और हमारी ये जो नहीं चलने दी वो यूएस एड वालों ने नहीं चलने दी, और ये क्या हमारे मुल्क में आके कर रहे हैं, तो मजहबी आदमी नहीं है ना भाई, लेकिन चलो ठीक है, हम ये क्या प्रिज्यूम करते हैं कि वो एक मोहिब्बुल पाकिस्तानी है, या फर्ज किया कि वो एक फ्रीडम फ्री मैन है, वो कहता है मैं मौलवी की बात नहीं मानूंगा तो फिर मैं अमरीका की भी नहीं मानूंगा, मैं मौलवी की हेगमनी बर्दाश्त नहीं करता, मैं मुल्ला की हेगमनी बर्दाश्त नहीं करता, मैं मजहबी पेशवाओं की नहीं करता, तो मैं अमेरिका की भी नहीं करूँगा, है ना। तो भाई अमेरिका ने उसके प्रोग्राम नहीं चलने दिए, नहीं तो आज़ाद मीडिया ने क्यों नहीं,
सिर्फ जो है रेडिकल है, कन्फॉर्मिस्ट नहीं है,
नहीं
तो मीडिया में इसको नहीं मान रहा, मुल्ला को तो उनको भी नहीं मान रहा,
किसी को भी नहीं मान रहा, तो फिर उसको बेचारे उसको क्या करेंगे, उसको उठा के बाहर फेंक देंगे, ही डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वजूद कहाँ रखेंगे, वजूद रखेंगे पब्लिक स्फीयर में, पब्लिक स्फीयर के लिए आप पब्लिक में नहीं जाते, पब्लिक से बाहर निकल के घर में रंगीन डब्बे के आगे बैठ जाते हैं, वो है पब्लिक स्फीयर। अब वो जो भी आपको बताए आप समझते हैं महाशय यही चाह रहे हैं, ठीक है अभी इसको हम यहीं पर रोक लेते हैं, मुझे यहीं पर पहुँचना है, तो फिर इंशाल्लाह हम बात करेंगे, सही है, ओके, खुदा हाफिज़। हेलो भाई, इस हफ्ते हम लोग कहाँ जा रहे
हैं?
नहीं वो उनका मेरे पास फ़ोन आया था, वो कह रहे थे वो गलत फहमी हो गई है।
अच्छा
हाँ, हमारी जो है वो
30, 31
और यकुम
क्या तीस को
जुमा हफ्ता इतवार, इतवार को फिर रात में हम वापस आ जाएंगे।
30 को किस वक्त करेंगे कुरान की?
अब ये नहीं, ये मैं
बता दूँ,
आ
जाए नहीं साहिवाल नहीं, ये
मीरपुर
खास।
अच्छा
ठीक है,
अच्छा मैं नमाज पढ़ रही कौन है दो बजे नमाज होती है यहाँ एक और कर्जे आ गई मुझे वो आपकी पुरानी कर दी बात है कौन है दो बजे वाले साहब हनी भाई कैसे भी है ठीक ठाक है। अच्छा हनी भाई आप मेरे पास 2 बजे तक आ जाइएगा उसी क्लास में नहीं आ जा अरीबा की क्लास में नहीं अरीबा की क्लास में नहीं आ जा आप हाँ बस ठीक है तो फिर आप मेरे पास 2 बजे तक आ जाइएगा ठीक है। हाँ हाँ नमाज पढ़ के आराम से आएंगे आगे आप एक खाना खा लीजिएगा यहीं पर जो है ठीक है यहीं पर खाना खाइएगा अस्सलाम वालेकुम।